में एक चीज जो हम भूल जाते हैं, जो लोग इंडस वैली में रहते हैं अब और पाकिस्तान में रहते हैं, कि हमारी जो सारी एपिक्स हैं उनमें सब में जो हीरोइन है, या मैं कहूँगा जो हीरो है और जो आशिक है और जिसकी सेलिब्रेशन है और जिसके पीछे, जिसके अराउंड पूरा ताना बाना है उस एपिक का, वो सब खवातीन हैं।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खास एपिसोड है, कुछ मैसेज आने शुरू हो गए कि ये भी पूछना है, वो भी पूछना है। सेक्रेटरी जनरल हैं HRCP, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, पर आप सब जिस बारे में जानते होंगे, जिस वजह से ट्रायलिंगुअल पोएट है, मेले में अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट और अवार्ड विनिंग किताब है, क्रिमजन पेपर्स, एसेज हैं इनके सोशल हिस्ट्री पे, पॉलिटिकल हिस्ट्री पे। ये इशू होता है जब कोई गेस्ट आते हैं ना, उनकी इतनी महारत इतनी ज़्यादा फील्ड्स में होती है, तो मुझे भी समझ में आता क्या क्या बोलूँ मैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड जीत चुके हैं, हारिस खलीक साहब हमारे साथ हैं, कैसे हैं सर?
मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे हुक्म दिया, मैं हाज़िर हो गया आपके पॉडकास्ट पर, और आपकी जो जो स्टैंड अप कॉमेडी है उसका मैं बड़ा फ़ैन हूँ बहुत अरसे से, और ये पॉडकास्ट भी गाहे बगाहे देखता रहता हूँ, तो बहुत शुक्रिया।
आपने मेरी स्टैंड अप कॉमेडी का जिक्र कर दिया, बड़ी नोटराइटी मुझे मिलती है मेरी स्टैंड अप कॉमेडी की वजह से, तो मैंने बोला सिर्फ मुझे गालियाँ ना पड़े, आपको भी पड़े। एक सिंस वी हैव गॉन डाउन दिस लाइन, एक मे बी आइडिया पाकिस्तान में, मेन स्ट्रीम पाकिस्तान में प्रेवलेंट हो गया कि नहीं, आर्ट जो होता है ना तो उसका एक रुतबा होना चाहिए, उसका एक तरीका होना चाहिए, तो इस तरह के अल्फाज जो इस्तेमाल करते हैं फिर वो आर्ट की कदर नहीं होती, जैसे मंटो तो एग्जिस्ट नहीं करता। आप भी अपनी शायरी में कभी कंजर भी बोलते हैं, कभी ये भी बोलते हैं, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी राय जनरली क्या है ऑन द यूज़ ऑफ सर्टन वर्ड्स, ऑन द पीपल हु गेट कीप आर्ट?
देखिए, लोगों में एक बात तो वैसे पाकिस्तान के बारे में हम अमूमी तौर पर अगर देखें तो पाकिस्तान को या हम जैसे लोगों को बचाया हुआ ही तीन चीज़ों ने, क्योंकि सियासत, मईशत, समाज, जिस पे हम आगे चल के बात करेंगे उनके तो हालात सबको पता हैं, उसमें एक है शेर, एक है सुर और एक है जुगत, यानी लतीफ़ा, मिजाह कह लें। तो ये जो शेर, सुर और जुगत है, ये तीन चीज़ें इसमें मैं समझता हूँ कि इसको जो लोग गेटकीप करने की कोशिश करते हैं, जो कुछ मेयारात मुतायन कर लेते हैं और वो मेयारात जो हैं उनके तहत हर काम करने का एक आपको, यानी आप पर ज़ोर डालते हैं कि आप एक ख़ास तरह से अपने फ़न को बरतें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चूँकि अगर आपने ख़ुद ही सआदत हसन मंटो का नाम लिया, तो बाउंड्रीज़ को पुश करना होता है, तो लिंग्विस्टिक बाउंड्रीज़ को भी पुश करना होता है, और सेंसिबिलिटी जो है उस अहद की जो हिस्सियत है वो अदा ही उस अहद में बोली जाने वाली ज़बान से होती है। हमारे यहाँ बहुत असर है फ़ारसी का, अरबी का, हालांकि हमारी संस्कृत बेस्ड, यानी संस्कृत बेस्ड लैंग्वेज है ना हमारी, वन ऑफ द इंडो आर्यन लोकल हमारी ज़बान है, लेकिन उसमें बहुत सारी वोकैबुलरी है, यानी ज़खीरा अल्फाज हमारा अरबी, फ़ारसी, और अब तो अंग्रेज़ी से भी बहुत हमने मुस्तार लिया, और मैं अंग्रेज़ी के लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर देता हूँ। साथ साथ मैंने जो दीगर पाकिस्तान की कौमी ज़बानें हैं उनके अल्फाज भी मैं अपनी उर्दू शायरी में बहुत सहूलत से इस्तेमाल करता हूँ। उसकी वजह यह कि मुझे सोचना नहीं पड़ता जो मेरे जहन में, क्योंकि शायरी में ज़ाहिर है कि ये तो नहीं होता कि आप फैसला करके कोई चीज़ लिखें, मतलब तरह ही मिसरा दे दें और फिर सोच सोच के गज़ल लिखें, तो उस तरह का कलाम तो वो भी अहम है, मश्क के लिए वो भी बड़ा अच्छा है, मुझे किसी फॉर्म से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन इससे एक लेकिन बात का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है, और वो बात ये है कि आप जमालियात पे समझौता ना करें, इस्थेटिक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जो भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी बात आप कह रहे हैं, कितनी ही करख्त ज़बान भी हो सकती है, लेकिन उसका भी एक इम्पैक्ट होना चाहिए, असरअंदाज होनी चाहिए, उसकी उसमें तासीर होनी चाहिए। तो मैं बिला वजह कंजर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। मैं जो इनविजिबल लोग हैं या जो और लोग हैं, कंजर को तो आपने एक मिसाल दी, और भी चंगड़, चूड़े, जनाई, दाइयाँ, ये सारे अल्फाज मैंने बरते हैं, कुछ लोगों को नहीं पसंद आते होंगे, लेकिन और कैसे आप बात करेंगे, मतलब मैं कोई एक अगर एक सफाई करने वाला है जो मेरे लिए नहायत काबिल एहतराम है, तो उसको मैं क्या मतलब सैयद साहब कह के या ब्राह्मण कह के तो नहीं बुलाऊंगा ना, उसको मैं वही कहूंगा जो मुआशरा उसे कहता है। और फिर एक गैर शौरी मेरी कोशिश ये होगी कि अगर वो नज़र नहीं आ रहा जिन लोगों को तो उन्हें वो नज़र आए, और अगर उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंच रही तो उसकी आवाज़ पहुंचे। तो इसलिए ये अल्फाज मैं नहीं समझता कि इनको इस्तेमाल करने में, या आप जिस तरह की के मजाक करते रहे हैं तो उस वो लोग अगर इंजॉय करते हैं और उसमें उससे लुत्फ आता है तो लुत्फ लेना तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है इंसान का खुश रहना। और मिजाज जो है ना वो बहुत आपको कैथार्टिक होता है, और आप अगर आपको ह्यूमर करना आना चाहिए, एक सख्त से सख्त सूरत हाल को भी ह्यूमर करना आना चाहिए। नाज़िम हिकमत को जब ये एक उसमें खड़ा कर देते थे एक पॉन्ड ऑफ शिट में गर्दन गर्दन तक, तो वो ऊंची ऊंची आवाज़ में तुर्की जबान में गाने गाना शुरू कर देता था, सेलिब्रेटरी सॉन्ग्स गाना शुरू कर देता था। इस तरह से उसने वो शदीद जो टॉर्चर था, तशद्दुद था, और जो जेलें उसने काटी हैं तुर्की में, वो नाज़िम हिकमत ने इस तरह से बर्दाश्त किया।
स्लेवरी सॉन्ग्स की एक पूरा जॉनरा है, कि स्लेवरी के दौरान, एंड आई थिंक वो इवेंचुअली फिर ब्लूज़ भी बन जाता है। इसमें आपने कहा कि लुत्फ उठाना इसमें कोई बुरी बात नहीं होती, उसकी भी अगर हम रूट्स देखें पाकिस्तान में से जो भांड कल्चर है वो संस्कृत थिएटर में आपको उसके रूट्स मिलते हैं, तो उसमें एक सोशल इन्वर्जन का भी एक बड़ा आइडिया है। अमानुल्लाह साहब, अमानत चंद और हिस्टोरिकली इस तरह के जो लोग हैं वो काफ़ी सोशल स्टेटस को इन्वर्स करके, कि जिस तरह वो शेक्सपियरियन आइडिया भी फूल का है, तो जो जिसको माशरे में हम जाहिल समझते हैं वो जब अकलमंद बात करता है उसको फिर थप्पड़ भी पड़ती है। बट हाउ मच डू यू, व्हाट आर योर ओपिनियंस जब हम आर्ट और की बात कर रहे हैं, कि पावर इसमें कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? अब जिस तरह चूड़ा लफ्ज़ है वो पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है डेरोगेटरी टर्म्स से, सो ऑफन इट इज़ यूज विथ हेट फॉर अ सर्टन कम्युनिटी। आप अपनी शायरी में कर रहे हैं अनसीन को सीन कराने के लिए, लेकिन अगर लेट्स से पाकिस्तान है, हमें पता है क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा जुल्म होता है, फिर उनको सोर्स ऑफ कॉमेडी बनाकर, उनका मजाक उड़ाकर या उनके मज़हब का मजाक उड़ाकर आप अगर लुत्फ इन्जॉय कर रहे हैं, तो दोस पावर डायनामिक्स हाउ इम्पॉर्टेंट आर दे वेन यू आर क्रिएटिंग आर्ट, और हाउ इम्पॉर्टेंट शुड दे बी?
देखिए, आर्ट और पावर में एक बहुत ही एक क्लासिक टेंशन रहती है। आर्ट और पॉलिटिक्स में वो टेंशन नहीं होती। पॉलिटिक्स अलहदा चीज़ है, पावर अलहदा चीज़ है, आर्ट एक अलहदा चीज़ है। तो एक एक उस आर्ट जो है वो सबवर्ट करता है पावर को। आर्ट पावर को, यानी मैं उस आर्ट की बात कर रहा हूँ जो रह जाने वाला आर्ट है, मैं उस आर्ट की बात नहीं कर रहा जो स्टेटस को बरकरार रखने के लिए जो भी दुनिया में एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, यानी हम तो पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट कहते रहते हैं ना, वरना दुनिया की हर रियासत में एक एस्टैब्लिशमेंट होती है और उसकी एक एक उसके उसका तरीका होता है पावर को एक्सरसाइज करने का और मैक्सिमाइज करने का। आर्ट उसे सबवर्ट करता है। और जो आप बात कर रहे हैं कि मेहनतकश तबकात का मजाक उड़ाने वाले लोग और उनको और उनकी तजलील करने वाले लोग और उनकी तजहीक करने वाले लोग, तो आर्ट तो इसको पलट देता है। देखिए ना, आप अपने यहाँ भी देख लें, हमारे यहाँ आपने फिर मंटो की बात की, मैं राजेंद्र सिंह बेदी का भी जिक्र करूँगा, गुलाम अब्बास का भी जिक्र करूँगा, और दुनिया में और जगह भी आप देखें कि डिकेंस ने क्या किया है या जो और बड़े लिखने वाले हैं वो किस तरह से यानी उस पूरी जो एक जमी जमाई ताकत के नशे में चूर जो क्लास होती है उससे वो कैसे मुसलसल उसको बदलने की और उस पे यानी उन उस मसावात को तब्दील करने की कोशिश करते हैं। मसावात तो है ही नहीं, लेकिन एज एन इक्वेशन को की मैं बात कर रहा हूँ कि उस इक्वेशन को बदलने की मुसलसल कोशिश करते हैं। शायर का या फनकार का सियासी तौर पे सरगर्म होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सियासी तौर पे बाशऊर होना बहुत ज़रूरी है।
बट इसमें aren't you being too hopeful by saying that's the only art that lasts? अगर हम उर्दू अफसानों की तारीख देखें, हो सकता है कि उनकी पावर पॉलिटिक्स प्रोग्रेसिव हो, लेकिन उनकी जेंडर पॉलिटिक्स हिस्टोरिकली हैव बीन टेरिबल। इन मेनी ऑफ दीज अफसाने वुमेन आर बीइंग ऑब्जेक्टिफाइड। मे बी वो नेशनल डिस्कोर्स में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। एक पेट्रियाकल सोसाइटी में हम रहते हैं, मर्द ही लिख रहे हैं, मर्दों के लिए लिख रहे हैं, मर्द ही बैठकर उस पर हंस भी रहे हैं, लेकिन अब जब उसको रिवाइज़ किया जाता है या अब सोचा जाता है या जब एक जेंडर पॉलिटिक्स पे ज़्यादा लिखा जा रहा है समझा जा रहा है वन फाइंड्स देम एक्सट्रीमली लैकिंग बट दे आर द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑथर्स इन
सम ऑफ देम आर सम ऑफ देम आर हाँ लेकिन ये सिर्फ उर्दू में तो नहीं है या पाकिस्तान की जबानों में तो नहीं है तो अक्रॉस सारी दुनिया में है मगर आप ये भी तो देखें कि आपके यहाँ इस बात पर भी तो मेरा ख्याल है कि और ये बिल्कुल ठीक है मतलब इसमें तो इसी तरह मिसोजिनी और रेसिज्म दोनों जिन्होंने खैर अब वापस वो दरवाज़ा खटखटा रही हैं इंसानियत के मकान का लेकिन मिसोजिनी और रेसिज्म जो है यानी औरत दुश्मनी और नस्ली इम्तियाज ये आपको सारी दुनिया की ज़बानों में नज़र आएगा लेकिन हमें एक चीज़ जो हम भूल जाते हैं जो लोग इंडस वैली में रहते हैं अब और पाकिस्तान में रहते हैं कि हमारी जो सारी एपिक्स हैं उनमें सब में जो हीरोइन है या मैं कहूँगा जो हीरो है और जो आशिक है और जिसकी सेलिब्रेशन है और जिसके पीछे जिसके अराउंड पूरा ताना बाना है उस एपिक का वो सब ख्वातीन हैं। सिंधी अदब में शाह लतीफ़ के यहाँ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के यहाँ सात सुरमियों सात सुरमी हैं यानी सेवन जो उनकी जो हीरोइंस हैं वो सारे अब उसमें मोमल है उसमें ससोई है उसमें मारवी है उसमें सोनी है वगैरह वगैरह तो ये मतलब आप देखें और इसी तरह हीर यानी पंजाब की सबसे बड़ी लोक दास्तान जो है तो वो तो एक उसमें जो मेन कैरेक्टर है मेन प्रोटैगनिस्ट है वो औरत है और कि जिस तरह से मतलब दामोदर दास से लेके वारिस शाह तक और अब हीर वारिस शाह चूँकि इस वक्त सबसे अहम रेंडिशन ऑफ हीर समझी जाती है तो उसमें आप देखें कि पूरे उस पंजाब का जो एक आपने जो पावर डायनामिक्स की अपने पिछले सवाल में बात की थी और पंजाब का समाज और कैसे ताकत डिफाइन हो रही है और कैसे उसे हीर सबवर्ट करती है और कैसे जो है रांझा टिल्ला जोगियाँ जाके और जोग लेता है और उसमें मजाहिब की आपस में क्या एक ताल्लुक़ है कि आप एक हिंदू जोगी के पास जा रहे हैं या मुसलमान जोगी के पास जा रहे हैं और आप जो है वो उसके बाद एक इश्क है और फिर उसको वो कैसे तो ये तो हमें ये तो सेलिब्रेट हमें ज़रूर करना चाहिए। दूसरे हमें 20वीं सदी में इस्मत चगताई से लेकर कुरतुल ऐन हैदर तक की जो लिखने वाले हैं हमारे या खालिदा हुसैन बाद में यहाँ हुई हैं ये बड़े लिखने वाले हैं फहमीदा रियाज़ हैं जिन्होंने तोड़ दिया है सब कुछ और बहुत ही अहम शायरा हैं किश्वर नाहिद अभी जिंदा हैं खुदा उन्हें लंबी उम्र दे इसी तरह और बहुत सी ख्वातीन शायरात हैं और ये भी तो हुआ है ना तो ये भी पास्ट में सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारा सारा अदब जो है वो सेक्सिज्म से और रेसिज्म से भरा हुआ है बहुत सी रोशन मिसालें भी हैं।
ऑब्वियसली जनरलाइज करना तो किसी भी चीज़ हाँ। आपको हर मिसाल ही उसमें मिल जाएगी। इसमें जब हम पढ़ाते हैं अब जिस तरह मर्चेंट ऑफ वेनिस जब अक्सर सॉरी नॉट मर्चेंट ऑफ वेनिस द टेमिंग ऑफ द शुरू जब अक्सर शेक्सपियर का पढ़ाया जाता है या परफॉर्म भी होता है इट्स डन एज सैटायर कि क्योंकि वो ऑन द फेस ऑफ इट इतना मिसोजिनस लगता है तो इट ऑलमोस्ट मस्ट हैव बीन अ जोक ताकि वो जेंडर एक्सपेक्टेशंस आप सबवर्ट कर सकें नॉट प्रमोट रिग्रेसिव आइडियाज ऑफ जेंडर अ लॉट टाइम्स इट्स परफॉर्मड एज अ कॉमेडी इट्स परफॉर्मड एज अ सैटायर और अ फार्स।
मैंने तो, उसका एक परफॉर्मेंस आपका कथा कलाम हो रहा है डॉल्स हाउस का भी और द टेमिंग ऑफ द श्रू का भी ये मैंने देखे हैं स्टेज पे बाहर और ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि उसको उन्होंने बिल्कुल उसकी जो प्रेजेंट जो डायरेक्शन है वो उसके कॉन्टेंट को बिल्कुल बदल देती है।
तो यही मैं इस पे आ रहा था कि जब हम पढ़ाते हैं या जब हम चीज़ों को प्रमोट करते हैं उसमें आपको लगता है एकेडमी की थोड़ी फीलिंग है। अदील अफजल आए हुए थे पॉडकास्ट पे उन्होंने एक पूरा मॉडर्न ब्रेकडाउन करके हीर का दिया कि भाई हीर तो एक फेमिनिस्ट आइकॉन है वो तो आपको कंसेंट सिखाती है वो कहती है ठीक है शादी हो गई है मैं जब तक नहीं बोलूँगी तो मुझे नहीं छू सकती अपना फैसला करती है फिर जाके बोलती है मैं खुद अपने आप को डिफेंड करूँगी। इस नज़रिए से जो स्टोरी में मौजूद है ये नहीं कि हम इन्वेंट कर रहे हैं ये नहीं कि अच्छा यार अब लिबरल्स को हर जगह ये फेमिनिज्म नज़र आएगा भाई जो स्टोरी में वही चीज़ें हम बता रहे हैं बट क्योंकि हम उसको उस तरह बता कर कि ये आपका कल्चर है ये आपकी हिस्ट्री है दिस इज़ हु यू आर वी डोंट प्रमोट दैट वी डोंट टीच दैट विच इज़ वाई वी डोंट वैल्यू इट एज वेल।
ऐसा ही है और जो आपने बात की ना कि कैसे पढ़ाते हैं और क्या दिखाते हैं उसके अलावा आपका जो एक जो सबसे मुश्किल बात है और हमें مستقل سیکھنا ہوتا ہے, کیونکہ ہم بھی بہت سی غلطیاں کرتے ہیں, اور مرد یعنی اگر وہ سینسٹائز ہو بھی جائیں تو اس کے باوجود ایک جو انسٹنکٹیولی بھی اور سوشلی بھی, اور جو پورا ایک آپ کی جین کوڈ بدل گیا ہے نا ہزاروں سال میں لاکھوں سال میں, اس میں وہ چیزیں آ گئی ہیں, تو آپ کو ایک اسٹرگل کرتے رہنا پڑتا ہے. تو جو لوگ ہمارے ہاں یعنی درس و تدریس سے وابستہ ہیں یا لوگوں کو یہ یا انفلوئنسرز ہیں, تو انہیں اپنے بارے میں بھی مستقل انہیں اپنے آپ کو کریکٹ کرتے رہنا ہوتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں مجھے کرنا پڑتا ہے, مجھے کرنا چاہیے اور میں کرتا ہوں, کیونکہ کچھ چیزیں جو ہیں آپ بالکل غیر شعوری طور پہ کرتے ہیں, ان نوئنگلی کرتے ہیں, انسٹنکٹیولی کرتے ہیں, ریفلیکس آپ کا بالکل مختلف ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک لمبا عمل ہے, یہ اوور نائٹ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا اور یہ جو ہے نہ ٹھیک ہو سکتا ہے. تو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ایک پورا پروسیس ہے, اور اس میں ایک بہت ایک انڈرسٹینڈنگ بھی چاہیے اور ایک پیشنس بھی چاہیے. جو 75 برس کے ہمارے بزرگ ہیں ان سے ہم اس قسم کی سینسٹیوٹی اور انڈرسٹینڈنگ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے جو آپ ایک 25 سال کے نوجوان سے کریں گے, اور یہ کچھ وقت کے ساتھ اور جنریشنز اوور جنریشنز چیزیں تبدیل ہوتی ہیں, اوور نائٹ نہیں ہوتی. تو جو لوگ اس سٹرگل میں ہوتے ہیں ان کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے تاکہ وہ مستقل ایک بلیجرنس میں نہ رہیں, مطلب مستقل ایک مہازارائی سے معاملات درست نہیں ہوتے.
اس میں کیا آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے کلچر کو اپنی ہسٹری کو دیکھ رہے ہیں, کبھی کبھی کلیشز وتھ دی آئیڈیا آف پاکستان دیٹس بن کنسٹرکٹیڈ دیٹس بن کریٹڈ, اگر مونجو داڑوں میں ہمیں کسی ناچتی ہوئی لڑکی کا ایک اسٹیچو مل جاتا ہے تو اب ہمیں سمجھ نہیں آتا کیا کریں, یہ ہیں ہم یا یہ ہم نہیں ہیں. تو ایون وین وی ٹاکنگ اباؤٹ اسٹوریز, وین وی ٹاکنگ اباؤٹ لٹریچر, وین وی ٹاکنگ اباؤٹ شاعری, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو اس ڈھانچے میں لانا یا اس نقلی فریم ورک میں لانا جو ہم نے بنایا ہوا ہے کہ اگر بلے شاہ کہتا ہے کنجری بن کے یار مناوٹ دے, تو اب جب آپ اردو پڑھا رہے ہوں گے یا آپ کلاس میں پڑھا بھی رہے ہوں گے, ویسے تو پڑھائیں گے نہیں ہے لیکن پنجابی کلاس میں, تو یو ہیو ٹو بی لائک نہیں 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 یہ وہ نہیں کہہ رہا جو لکھا ہوا ہے, دس جسٹ اس کا ایک کوئی سینیٹائزڈ ورژن آپ بتائیں گے.
ہاں بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو, مجھے یاد ہے اسکول میں کیونکہ میں یو نو یعنی چلڈرن آف ضیاء الحق دا ایرا آف دیٹ ڈارک ایرا, خیر وہ ڈارکنیس کبھی کم ہو جاتی ہے کبھی زیادہ ہو جاتی ہے لیکن وہ
ضائع جنریشن,
ہاں تو ضائع جو ہو گئے تو اسی جنریشن میں میرے سامنے مثال کے طور پہ پاکستان اسٹڈیز انٹروڈیوس ہوئی ہے, سوشل اسٹڈیز ختم ہوئی ہے, میں اسکول میں تھا جب ضیاء صاحب یعنی پرائمری اسکول میں تھا جب ضیاء صاحب آئے, تو ظاہر ہے کہ سارا وہی دور ہے. تو اس میں بڑے مزے کے کام ہوئے, اس میں ایک تو سوشل اسٹڈیز, پہلے تو جغرافی ہسٹری صرف سب پڑھایا جاتا تھا چونکہ میں نے اپنی والدہ کی, مجھے ذرا شوق تھا کہ کتابیں پڑھنے کا, تو میں نے اپنی والدہ کا سارا کورس ورک پڑھا ہوا تھا جو ان کی ایف ایس یعنی کیونکہ پڑھنے سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن میں کافی جلدی مطلب ہے کہ پڑھنے لگا تھا انگریزی اردو, تو وہ ان کا میں نے پرانی کتابیں نکال نکال کے میں پڑھتا رہتا تھا شوق میں, ہسٹری کی اور ادھر ادھر کی ان کی کورس کی کتابیں. تو وہ پھر وہ کورس بدل گیا, پھر وہ پہلے جغرافیہ تاریخ اور مدنیت جو ہے سیوکس جو ہے ان کو ساروں کو ملا کے سوشل اسٹڈیز بنا دیا گیا ہمارے زمانے میں, پھر وہ ہوتے وہ سوشل اسٹڈیز سے ہی وہ پاکستان اسٹڈیز بن گیا. اسی طرح شیعہ اور سنی بچوں کے لیے اسلامیات ہمارے سامنے علیحدہ ہوئی, ہم سے دو کلاسیں سینئر تین کلاسز سینئر جو بچے تھے ان کی دینیات کی کتاب ایک ہی ہوتی تھی مسلمان بچوں کی, اور جو ہمارے دیگر مذاہب کے بچے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے مسیحی پاکستانی تھے ہندو پاکستانی تھے ان بچوں کے لیے ایتھکس کا سبجیکٹ ہوتا تھا اخلاقیات کا, تو میرے والد بھی یہ مذاق کیا کرتے تھے کہ بھائی اخلاقیات کی کیا مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے, تو مسلمانوں کو تو آپ چھ کلمے یاد کرا رہے ہیں اور ان کو اخلاقیات پڑھا رہے ہیں, تو کہنے لگے پھر آگے چل کے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اور وہ ٹھیک کہتے تھے وہی نکلے گا جو نکلا.
دے آر بیٹر بیہیوڈ.
ہاں سو لیکن خیر کمنگ بیک ٹو دا سبجیکٹ, تو پھر وہ شیعہ سنی اسلامیات الگ ہو گئی. تو ہمارے لیے ایک نہایت ہی میں کینٹ پبلک اسکول میں پڑھتا تھا کراچی میں, تو ایک دن ہماری جو ٹیچر تھیں اسلامیات کی بڑی قابل خاتون تھیں, بہت اچھی سمجھدار اینڈ آلسو ویری انکلوسیو اینڈ سیکولر آئی مسٹ سے, پڑھاتی اسلامیات تھیں اور بہت اچھی طرح پڑھاتی تھیں. तो वो आई और उन्होंने आके कहा कि भाई नवीं जमात में हम जब पहुंचे हैं तो उन्होंने आके कहा कि भाई अब आपकी जो है ना आप में से अब उनको समझ में ना आए, उनके सारे स्टूडेंट्स हैं और वो तो ज़ाहिर प्रिय ज़ियाउलक मुसलमान थी ना, मुसलमानों की कैफियत भी तो बदली है ना पाकिस्तान में ज़ियाउलक के आने के बाद, तो प्रिय ज़ियाउलक मुसलमान तो बहुत यानी समझदार नॉर्मल लोग होते थे, तो उन्होंने आके कहा कि वो बहुत हिचकिचाते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि आप में से कौन से बच्चे जो हैं उनका ताल्लुक शिया फ़िक़्हे जाफ़रिया से है, कुछ इस तरह। अब वो आधे बच्चों को फ़िक़्हे जाफ़रिया समझ में आया, आधों को नहीं, सुन्नियों को तो बिल्कुल ही नहीं पता होता सुन्नी बच्चों को कि कौन से फ़िक़्हे हैं और क्या है, तो बड़ी मुश्किल। खैर बाहर कैफ़ वो क्लास तकसीम हुई तो उस दिन हमें पता चला कि जो बचपन से मेरे साथ फलां लड़का पढ़ता है वो शिया है कि सुन्नी है। तो ये
आपको बस लग रहा था कि ब्लैक शलवार कमीज बहुत पसंद है।
हाँ, हमें तो यही लगता था कि यार इसको ये क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता है, या ये जो है इसका कभी इसकी सफ़ेद कमीज जो है उस पर कोई धब्बा नहीं होता। एक के बारे में ये ख्याल था कि जी ये बड़ा साइंसदान है, ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है, उसने हमारे केमिस्ट्री लैब में आग भी लगा दी थी। तो इस तरह मतलब है कि हमारे लिए पहचान जो थी अपने दोस्तों के नाम थे, और हमारे लिए उनकी पहचान जो है उनकी क्लास में या स्पोर्ट्स ग्राउंड में परफॉर्मेंस थी। उनकी पहचान ये नहीं थी कि वो किस ख़ानदान में पैदा हुए हैं और वो हाथ खोल के नमाज़ पढ़ते हैं या हाथ बांध के पढ़ते हैं।
आप क्योंकि आपके बचपन का जिक्र हो रहा है, आपके वाले साहब एक प्रोग्रेसिव फिल्म मेकर थे, एक आर्टिस्ट थे, आर देयर इज दैट द एनवायरनमेंट, आर देयर सम ऑफ द लेसंस इन द फैमिली दैट यू ग्रू अप, और डू यू फील लाइक मोस्ट ऑफ पाकिस्तान वाज लाइक दैट बैक इन द डे एंड इट्स नॉट लाइक आप एक रेयर बबल में थे, ज़्यादातर लोग आप ही की फैमिली की तरह।
देखिए ज़्यादातर लोग तो हमारी फैमिली की तरह के नहीं थे, मगर बहुत सारे लोग हमारी फैमिली की तरह थे, और उसमें कुछ ज़रा ज़्यादा और नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात क्या है, मतलब मेरे वालिद जो थे वो कोई ख़ास यानी ज़ाहिर है कि उनका जो रुझान था वो मार्क्सिज्म की तरफ था, और लेकिन वो सरकारी मुलाज़मत भी करते रहे, मतलब वो एक टेक्निकल टाइप की थी, ज़ाहिर है वो कोई DMG पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या पुलिस सर्विस या कस्टम्स के अफसर नहीं थे, वो फिल्म्स बनाते थे और उस ज़माने में ज़ाहिर है कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स जो हैं उनमें बड़ी काम था उनका, और उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त भी देखा फिर ज़ियाउलहक के ज़माने में, अर्ली रिटायरमेंट ली और बहुत सारे मसाइल से गुजरे, लेकिन उनके लिए टॉलरेंस बहुत थी। चूँकि मेरी जो फुफियाँ थीं उनके बारे में वो कहा करते थे कि ये वो नमाज़ें भी पढ़ती हैं जो फ़र्ज़ सुन्नत और नफिल के अलावा हैं, तो वो सख्त एक उनका बहुत सख्त प्रैक्टिसिंग, लेकिन उनकी आपस में बहन भाइयों में या इर्द गिर्द जो हमारे ख़ानदान में लोग थे, ज़्यादातर लोग अपने बहुत प्रैक्टिसिंग मुसलमान थे, और उनका ये ख्याल था कि भाई इनके जो और प्रैक्टिसिंग मुसलमान होने के साथ साथ उनमें जो ज़रा ज़्यादा दौलतमंद थे और मुतमविल थे, तो उनको ज़ाहिर इश्तराकियत के जो मुआशी असूल हैं वो बिल्कुल नापसंद थे, लेकिन उनकी आपस में कोई यानी असल चीज़ जो ज़माने में थी वो ये नहीं थी कि कितने ख़ानदान किस किस्म के थे, असल बात ये थी कि अदम रवादारी नहीं थी, बहुत ज़्यादा एक दूसरे का एहतराम और टॉलरेंस थी, और मुख्तलिफ व्यूज़ के लोग आपस में बैठ के बात करते थे। मैं आपको एक मिसाल दूं, मेरे वालिद के जो एक बहुत ही जो बिल्कुल 180 डिग्री जिसको कहते हैं ना का फ़र्क, पोल्स अपार्ट, प्रोफेसर गफूर अहमद थे, और उनकी और मेरे वालिद की एक बहुत ही अच्छा ताल्लुक़ था, और वो आया करते थे हमारे घर, या कभी वालिद मेरे उनके यहाँ जाया करते थे, और या हमारे जो मेरी फूफी का घर था वहाँ उनसे मुलाकात होती रहती थी, वो उनके नज़दीक भी रहते थे और उनसे हमारी नस्बत भी है, कुछ बाय मैरिज कोई रिश्तेदारी मेरे किसी कज़न की उनके यहाँ शादी हुई, तो वो मेरे वालिद के साथ पूरी दुनिया की सियासत, पाकिस्तान की सियासत, और नहायत तमीज़ से बहस दोनों में जारी रहती थी। और मैंने ये देखा है, असल जो सबक है वो ये है, असल सबक ये नहीं है कि कौन तरक्की पसंद था और कौन रजत पसंद था और कौन अवामी नेशनल अवामी पार्टी के साथ था और कौन पीपल्स पार्टी के साथ था और कौन जमात इस्लामी के साथ था, لیکن شدید جو ایک تناؤ کا زمانہ تھا جب قومی اتحاد بنایا ہے بنایا گیا ہے بھٹو صاحب کے خلاف, تو اس میں ایک افسوس جو اب ہائنڈ سائٹ میں ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ اس میں تحریک استقلال اور نیشنل عوامی پارٹی جیسی جماعتیں بھی شامل تھیں, جماعت اسلامی اور دیگر دائیں بازو کی جماعتوں کے ساتھ, لیکن یہ امکان تو تھا نا کہ وہ سب ایک ساتھ تھے. اور پھر دوسری طرف پیپلز پارٹی کا معاملہ تھا, تو لیکن آپس میں گفتگو ہوتی تھی, مکالمہ ہوتا تھا. اور آپ بھول جاتے ہیں, ضیاء نے یہ, کیونکہ پاکستان میں یہ صرف ضیاء نے نہیں کیا, یہ پہلے دن سے ایک پروجیکٹ اریجر آف میموری میں اس کو کہتا ہوں, یادداشت کو مٹا دینے کا ایک پورا ایک منصوبہ ہے. تو لوگ بھول جاتے ہیں کہ جو پی این اے کا جو مولانا مفتی محمود اور کی سربراہی میں جو وفد تھا, جو بھٹو صاحب کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کے وفد سے 1977 کے انتخابات کے بعد مکالمہ کر رہا تھا, ان کا تقریباً معاہدہ ہو چکا تھا. بات کرتے تھے نا لوگ آپس میں بیٹھ کے, مختلف الخیال لوگ. اور یہ کسی سماج کے لیے بہت باعث برکت ہوتا ہے کہ مختلف الخیال لوگ بیٹھ کے بات کر سکیں, مکالمہ. کیونکہ جب مکالمہ ختم ہوتا ہے, تو اس کا اگلا جو اسٹیج ہے یعنی ڈائیلاگ, ایبسنس آف ڈائیلاگ لیڈس ٹو انڈیفرنس اینڈ اگنورینس بٹوین ٹو, اور ادرائزیشن ہوتی ہے. دیٹ انڈیفرنس اینڈ اگنورینس لیڈس ٹو ایکسٹریمسٹ ویوز اباؤٹ دی ادر, دیٹ ایکسٹریمزم لیڈز یو ٹو وائلنس. سو یہ پورا ایک آپ اس کا ایک, آئی مین اٹ از ظاہر ہے کہ وچ از مور نوانسڈ دین دیٹ, لیکن آپ اس کا ایک فلو چارٹ بنا سکتے ہیں اور پاکستان میں آپ نے ایسے ہوتے ہوئے دیکھا ہے.
آپ تاریخ میں دیکھ لیں, ہولو کاسٹ ایسے تھوڑی صبح اٹھے ہولو کاسٹ ہو گیا, پہلے ان کو بولا الگ کرو, پھر ان کو بولا کیا شاپنگ ٹائم الگ کرو, اچھا ملنا جلنا چھوڑو, دیر اٹ واز ڈن اوور ایئرز اینڈ دس از ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ. کہ اچھا جی یہ ان کے گھنٹے ہیں, یہ آپ کے گھنٹے ہیں, جوز جو ہیں صرف ان گھنٹے آ سکتے ہیں, اینڈ دین دا اسٹیٹ گاٹ انوالوڈ کہ اچھا جی کرسچن فیملیز جو ہیں وہ جوسیں نہیں ملیں گی. تو وانس یو ڈو دس گیٹوائزیشن آف دیم دین جسٹ بیکمز ایزیئر نا. آپ نے آئی ڈونٹ نو اگر جو جو ریبٹ دیکھی ہے, تو فینامنل مووی, تو جو بچہ ہے اس کے ذہن میں تو جوس کے ونگس تھے اور فینگس تھے, اس نے دیکھا نہیں. جب اس نے دیکھا اور ملا, اس نے بولا یہ کیا ہو گیا, مجھے تو لگ رہا تھا چڑیل جیسے لگ رہے ہوں گے. سو یس, دس از اسٹیپ ون کہ وہ اپارتھائڈ کنڈیشنز.
اس میں خواجہ احمد عباس کی ایک کہانی بھی ہے سردار جی,
سنائیے.
وہ اس طرح سے ہے کہ وہ افسانہ ہے ان کا, کہ جس میں وہ ایک شدید جو کیریکٹر ہے اس مین, وہ یہ وہ اس کو اس وہ اس ہیٹ کے ساتھ بڑا ہوا ہے, اور وہ ہیٹ بڑھتی جا رہی ہے سکھوں کے خلاف. ظاہر ہے وہ خالد صاحب پانی پت کے تھے, رہے تو بامبے میں زیادہ, لیکن انہوں نے ظاہر ہے کہ پنجاب کے جو صورتحال تھی, جو سکھ مسلم جو ٹینشن تھی اور تناؤ تھا اور کلیشز تھے, اور ظاہر ہے پھر سکھوں نے حکومت بھی کی تھی, اور وہ ایک ہندوؤں مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان ایک وہ اس کو بڑھاوا دیا گیا تھا انگریزوں کے زمانے میں خاص طور پہ, ورنہ تو سب ساتھ ہی رہتے تھے. ہنکی ڈوری نہیں تھا انگریز کے آنے سے پہلے سب کچھ, لیکن ایک کلونیل جو نظام تھا اس نے یہ تقسیم, کمیونل تقسیم اور دیگر طرح کی جو ڈفرینسز ہیں ان کو انکریج کیا. یہ بابری مسجد پہ بھی ہم آئیں گے, وہاں اس کو بھی ایک انگریز پادری تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس مسئلے کو اٹھایا تھا 18ویں صدی میں. تو خیر, یہ پورا ایک سلسلہ جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں, اس کہانی میں یہ ہے کہ وہ اس ہیٹ کے ساتھ بڑھتے ہیں اور پھر وہ جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ فساد ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے. سردار جی تو بہت اچھے آدمی ہوتے ہیں جو ان کے ہمسائے ہوتے ہیں یا جاننے والے جو ہمسائے ہیں غالباً, اور جب وہ سردار جی مار دیے جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں, وہ اس کا آخری سطریں کچھ اس طرح ہیں کہ یہ مین جو مسلمان کیریکٹر ہے یہ کہتا ہے کہ سردار جی نہیں مرے, میں مر گیا ہوں آج. تو وہ ایک پاورفل کہانی ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, ایک ادرائزیشن کیا جاتا ہے, ایک آپ کو بتایا جاتا ہے. یہ ایسٹ پاکستان کے ساتھ ویسٹ پاکستان میں ہمارے پرکھوں نے کیا تھا نا, یعنی بنگالیوں کے لیے کھانے کی میز الگ لگی جس دن ڈھاکہ میں, اس دن میرے والد نے کہا, وہ بنگلہ بولتے تھے, وہ کئی زبانیں جانتے تھے تو وہ بنگلہ بھی جانتے تھے, تو انہوں نے جب کچھ بات چیت ہوئی اور وہ تو دو میزیں لگیں علیحدہ علیحدہ. مغربی پاکستان سے آنے والے افسران کے لیے کھانا الگ تھا اور میز الگ تھی, اور مشرقی پاکستان کے مقامی افسران کے لیے کھانا الگ تھا اور میز الگ تھی.
بس جس دن
60 کی دہائی کے اواخر کی بات ہے, مطلب आप तो खैर बिल्कुल ही नहीं थे, गालिबन मैं भी नहीं था तब की बात।
बट आप सही कह रहे हैं, जिस दिन मीज़ें अलग हुई तो फिर ऑब्वियस मुल्क भी अलग हो जाएंगे। अक्सर मुझे बुरा भला भी कहा जाता है कि मैं कोई उर्दू से नफरत करने वाला आदमी हूँ, जब मैं इस तरह की बात करता हूँ कि मुल्क के ऊपर नाफिस की गई, फोर्स की गई, फोर्स नेशनलाइजेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा था। ऐसा मुझे टॉक्स अबाउट मल्टी लिंगुअलिज्म, टॉक्स अबाउट के इस रीजन में तो बड़ा कॉमन था। आपकी क्या राय है इसके ऊपर कि जो एक उर्दू प्रोजेक्ट बनाया गया और रीजनल लैंग्वेजेस को रेलीगेट किया गया, जो बंगाल में हमने वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट देखी एंड इवेंचुअली द लैंग्वेज इशू बिकेम व्हाट हैपेंड इन 1971, तो इस पूरी फोर्स्ड इन्फोर्समेंट ऑफ उर्दू के बारे में आपके क्या ख्याल है?
देखिए, ये तो एक तो बात हमें समझनी चाहिए कि ये भी एक कलोनियल प्रोजेक्ट था,
उर्दू
बिल्कुल कलोनियल प्रोजेक्ट था।
तारिक रहमान का अच्छा काम है
इस पे। हाँ, उनकी किताब हिंदी उर्दू वाली भी उनकी अच्छी किताब है, लैंग्वेज एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, वो कई जगह उन्होंने इस पे वो किया है। ये कलोनियल प्रोजेक्ट था। कलोनियल प्रोजेक्ट के इसके दो तीन डायमेंशन हैं। हिंदुस्तानी जबान थी, उसके दो स्क्रिप्ट थे, और 90% लोग या 80% लोग जो थे या 70% लोग जो थे वो नॉन लिटरेट थे, तो स्क्रिप्ट के तो मानी कुछ नहीं थे। स्क्रिप्ट तो महदूद था चंद फीसद पढ़े लिखे लोगों के तक। हिंदुस्तानी जबान थी, जो शुमाली हिंद में, दक्कन में भी उसका एक डायलेक्ट, लाहौर बड़ा पुराना मरकज़ है, यहाँ भी बोली समझी जाती थी पढ़े लिखे लोगों में, बंगाल में भी था इसी तरह। फोर्ट विलियम कॉलेज बना, बड़ी तरक्की हुई, बड़ा उन्होंने स्क्रिप्ट पे काम किया, लुगात मुरतब की। लेकिन आप जो प्रेमचंद के बेटे की किताब है, अमृत राय गालिबन उनका नाम है, उनकी किताब है द हाउस डिवाइडेड, हिंदी उर्दू तनाज़े पे, वो भी बहुत आम किताब है। ज़बान को तकसीम किया पहले तो हिंदुस्तानी ज़बान को, जिसको कोई हिंदवी कहता था। अच्छा, ये देखें, ये दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में आपको नज़र आएगा कि मुख्तलिफ ज़बानों के मुख्तलिफ नाम होते हैं जब वो बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं। और ये एक लिंगुआ फ्रांका समझ लें, एक लिंक लैंग्वेज तो थी एटलीस्ट इन नॉर्दर्न इंडिया। और आपको उसमें नज़र आएगा कि बिल्कुल ही रिमोट, यानी दिल्ली वाज़ द कोर अगर, तो रिमोट एरियाज़ में भी आपको कहीं कोई उर्दू का शायर मिल जाएगा हिंदुस्तानी ज़बान का। और स्क्रिप्ट्स का बहरहाल था कि भाई दो स्क्रिप्ट्स में लिखी जाती है, तो इन्होंने उसको बाकायदा हिंदू मुस्लिम तजाद पहले पैदा किया और उसको लिसानी बुनियादों पे उस्तवार करने की कोशिश की कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है और हिंदी हिंदुओं की ज़बान है। गालिब ने अपने आखिरी ख़त में गालिबन लिखा है अपने किसी दोस्त को कि अब तो मुझे, मेरी याददाश्त ख़राब हो गई है और अब तो मुझे अपने हिंदी कलाम का डेढ़ मिसरा याद रह गया है, या वो भी याद नहीं रहा। तो गालिब अपने इंतहाई मुफर्रिस पर्शनाइज्ड रजिस्टर की एक शायरी को हिंदी कलाम कह रहे हैं। तो इसको एक, इसका ये एक डिवीजन है, और उसको आपने देखा कि कैसे इस्तेमाल हुआ। मजे की बात यह है कि जो रामायण है, जो चकबस्त की उत्तर रामायण है गालिबन, तो उसका जो सबसे मुस्तनद नुस्खा है वो उर्दू में है, क्योंकि चकबस्त जो थे, चकबस्त लखनवी, वो उर्दू के शायर थे, और वो ज़ाहिर है कि लखनऊ का जो पूरा एक ज़बान, वहाँ बोली लिखी, वहाँ हिंदू भी और कायस्थ ख़ास तौर पर, लेकिन पंडित भी, वो सब उर्दू लिखा करते थे। दूसरी उर्दू इन्होंने इम्पोज़ की पंजाब पे, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे, पंजाब और अब जो भी खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, और यहाँ से उन्होंने पंजाबी का कायदा ख़त्म कर दिया। तो ये एक बहुत, मैं समझता हूँ कि ज़्यादती है, और ये एक मल्टीलिंगुअल इलाका है हम जिसमें रहते हैं। कम अज़ कम अभी अब तो तस्लीम कर लेना कि ये एक, यहाँ 72 ज़बानें हैं पाकिस्तान में। भाई 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, डर नहीं लगता ये कितने लोग हैं और इनकी कितनी ज़बानें हैं। अब उसमें 10-15 अगर आपकी बड़ी ज़बानें हैं तो उन्हें तस्लीम कर लेने में और उनको और ज़बानों को बराबर समझने में, देखिए उर्दू को एक एडवांटेज तो हमेशा रहेगा जो अंग्रेज़ी को भी है। वो एडवांटेज ये है कि इसके जो नेटिव स्पीकर्स हैं, दे आर आउट नंबर्ड बाय पीपल यूजिंग द लैंग्वेज। ये चीनी के साथ नहीं है, یہ انگریزی کے ساتھ ہے اور دو چار زبانیں غالباً اور بھی ہوں گے. فرینچ کے بھی آپ شمار کر لیں کہ اگر فرینکوفون افریقہ دیکھ لیں, حالانکہ اب ان کی بہت ساری جو بہت ساروں کی فرسٹ لینگویج بن گئی ہے, لیکن بہرحال یہ چار پانچ سات زبانیں ہوں گی دنیا میں ایسی. تو یہ تو ایڈوانٹیج ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی برتر ہو جائے گی دوسری زبانوں سے. بھئی ایک ہے زبان جس میں لوگوں کو آپس میں بات کرنی ہے, لیکن ان کی اپنی زبانیں. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ بابا فرید تو 800 سال پرانے شاعر ہیں, تو آپ کے یہاں, ہمارے یہاں اردو میں 800 سال پرانا کون شاعر ہے؟ تو بات کی زبان ہے نا. لیکن بہت اچھی بات ہے, بابا فرید کے یہاں آپ کو بعض لائنیں یا ان سے لے کے آپ بابا بلے شاہ تک آ جائیے تو آپ کو پوری پوری لائن لگے گا کہ یہ تو اردو کی, ہندی کی یا ہندوستانی کی لائن ہے. اسی طرح جو ہماری ووکیبلری جو ہے, ہماری جو دیگر زبانیں ہیں وہ ان زبانوں کی ووکیبلری جو ہے وہ ظاہر ہے پراکرتوں پہ اور کچھ سنسکرت سے لی ہوئی اور کچھ جو پراکرتیں یہاں بولی جاتی تھیں انہیں سے ڈیولپ ہوئی ہے, تو اس میں بہت کامنالٹیز ہیں. مطلب آپ چنتا کہتے تھے نا ہندی میں فکر کو, کہ فکر کو ہم کہتے کہ آپ وہ کہتے, ابھی بھی آپ فلموں میں سنتے ہوں گے کبھی کبھار بالی ووڈ کی, کہ آپ چنتت نہ ہوں یعنی آپ فکر مند نہ ہوں, تو پنجابی میں بھی آپ چنتا ہی کہتے ہیں. اسی طرح آپ بھروسہ جیسے کہتے ہیں وہ سندھی میں بھروسہ ہے, ذرا سا فرق ہے. تو یہ ایک دوسرے کی یہ سسٹر لینگویجز ہیں اور ساری بہنیں برابر ہیں. اور اگر دیکھا جائے کہ ان کا جو ظاہر ہے کہ اس میں ایک جو لنگوا فرانکا ہوگی اس کو ریلیٹو ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس میں زیادہ لوگ لکھتے ہیں. لیکن ہر زبان پاکستان میں پڑھائی جانی چاہیے, چوائس ہونی چاہیے لوگوں کے پاس, انوالنٹری کچھ نہیں ہونا چاہیے. رضاکارانہ طور پر اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں بچے جو زبان, ان کے پاس وہ آپشن ہونا چاہیے. اور اب تو ٹیکنالوجی اتنی ہے, اب تو 100 طریقے ہیں. اب بچہ گھر میں بیٹھ کے, جو ایک ریسورسفل گھرانے کا بچہ ہے, وہ ڈوولنگو پہ فرینچ سیکھ رہا ہے, وہ جرمن سیکھ رہا ہے, مگر وہ اپنی ماں بولی نہیں سیکھ رہا. تو یہ میں سمجھتا ہوں ضروری ہے, لیکن اس میں کچھ قصور اب بات کا بھی ہے. مطلب جو کچھ فیکٹرز بھی ہیں ایسے جس میں انگریز نے مثال کے طور پر جب پنجاب پہ قبضہ کیا ہے تو وہ وہاں سے, یعنی شمالی ہند کے دیگر علاقوں سے, ویسے پنجاب بھی شمالی ہند ہی سمجھیں, لیکن وہ جو ہارٹ لینڈ انڈیا ہے وہاں سے لے آئے بہت سارے لوگ اور لا کے ان سے پنجاب کی ایڈمنسٹریشن چلوائی, وہاں کے سپاہیوں کو استعمال کیا یہاں. بالکل اسی طرح جب انہوں نے اودھ پہ قبضہ کیا ہے یا دلی پہ یا اس طرف اٹیک کیا ہے تو وہاں انہوں نے سکھوں کو استعمال کیا, پنجاب کے سولجرز کو استعمال کیا, کیونکہ یہاں این آر کی تھی نا, ایک طوائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی پورے برے صغیر میں. تو ان سب چیزوں کا انگریزوں نے فائدہ اٹھایا. تو کچھ جو یعنی جو ان جو ڈویژنز ہیں, جو فالٹ لائنز ہیں, یہ خاصی پرانی ہیں. تو ہمیں انہیں تسلیم کر کے بجائے ڈینائی کرنے کے, اور ہمیں انہیں تسلیم کر کے آگے بڑھنا چاہیے.
اچھا ہوا سندھیوں نے بھروسہ کو تھوڑا اس طرح بدلا, ورنہ لفظ ایسا ہے کہ تھوڑا اور طرف بدل دیں تو مسئلے مسائل بھی ہو سکتے ہیں زندگی میں.
ہاں وہ تو ہو سکتے ہیں. وہ سارے لفظ ایک ہیں, جتنے ایکسپلیٹیوز ہیں وہ آپ کو انڈو گینجیٹک پلین کی زبانوں میں گالیاں ماشاءاللہ ہم کامن ہیں ہماری ساری.
یہ سمجھائیں نا کون کون سی ہیں.
نہیں وہ تو اب گالیاں دینا تو بھائی میرا کام اس طرح کا آج کل ہے کہ پہلے ہی کوئی لوگ کم پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو اب میں یہاں, اور پھر جن لوگوں کو میں وہ گالیاں دینا شروع کروں گا انہیں بھی اچھا نہیں لگے گا نا.
کمنٹ سیکشن میں پلیز بتائیے کہ کون کون سے لفظوں کی باتیں ہو رہی
ہیں. ہاں کمنٹ سیکشن میں جو لوگ کہیں گے وہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے, ان کی اپنی ثوابدید اور ان کی اپنی ذمہ داری.
اس میں آپ کہہ رہے ہیں ظاہری بات ہے جس کو جو زبان پڑھنی ہے اس کی آزادی ہونی چاہیے, ظاہر آپ کسی کو جا کے ڈنڈا تو نہیں مار سکتے, لیکن اپنی ماں بولی کی اہمیت کرنا بھی ضروری ہے. کیونکہ جب آپ اسٹیٹ پروجیکٹ ہے, اب جب آپ بچے کو بتا ہی نہیں رہے دیٹ پنجابی ہیز اینی تھنگ آف ویلیو ٹو یو یا اور سندھی ہیز اینی تھنگ ویلیو ٹو یو, آپ نہ ان کے شاعروں کے بارے میں بتا رہے ہیں, آپ جب اگر ٹی وی چلائیں گے تو اس میں بھی کچھ کام کی چیز نہیں آ رہی, آپ کو نہ کوئی پڑھا رہا ہے. ابھی میں یورپ میں گھوم رہا تھا, جس شہر میں جاؤ اس شہر کا جو بڑا آرٹسٹ ہے, کوئی رائٹر ہے, کوئی پینٹر ہے, اس کے میوزیمز بنے ہوئے ہیں, جو شہر آتا ہے اس کو بولتے ہیں نمبر ون اسپاٹ کی ہے کہ بھائی تم وین گو میوزیم جاؤ, تمہیں بتائیں گے واٹ میکس وین گو گریٹ. وہ وین گو کی کوئی فیملی ممبر نے شروع کیا تھا. سو دین دا آف کورس وین گوز پینٹنگز آر فینومینل, but the folk of Van Gogh almost becomes greater than the painter themselves. हम हमारे कल्चर्स को जब सेलिब्रेट ही नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तो एक बच्चा जो लाहौर में है, जो बीकन हाउस में है, जो LGS में है, जो अंग्रेज़ी पढ़ रहा है, जो इंग्लिश पढ़ रहा है, जो घर जा रहा है, नेटफ्लिक्स देख रहा है, वो पागल है जो उसको शौक पैदा होगा मैं पंजाबी सीखूँ।
नहीं देखिए, ये तो आपने उसको सप्रेस किया है ना, सप्रेस आपने किया है ना। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आप पाकिस्तान में पश्तो लिटरेचर पे PhD कर सकते हैं। सिंधी के मामलात अलग हैं, सिंधी ने अपना अपनी स्पेस को बरकरार रखा है, रिक्लेम किया है 1 यूनिट के बाद। 1 यूनिट में तो इन्होंने तबाही फेर दी थी ना पूरी। लेकिन लेकिन बाकी जो ज़बानें हैं उनके साथ ये हुआ है कि एक तो उनकी एलीट बहुत इंडिफरेंट है। तो अब इसका सारा मलबा हम जो हिंदुस्तान से आए हुए मुहाजरीन हैं या जो अंग्रेज़ करके गया है, सारा मलबा उन पर नहीं डाल सकते। अब जो यहाँ की अशराफिया है, पंजाब की अशराफिया है, खैबर पख्तूनख्वा की अशराफिया है, जो भी मतलब हर जगह की, पूरे पाकिस्तान की, उसने अपनी ज़बान को भी छोड़ दिया ना। तो वो एलीट्स जब इंडिफरेंट हो जाती हैं अपने कल्चर से, अपने आर्ट से, अपनी लैंग्वेज से, तो जाहिर है कि कोई उसको संभालने वाला नहीं रहता। और फिर जो आपने स्टेट प्रोजेक्ट की बात की, वो तो आपको पता है ना कि वो एक इसको मैं कहता हूँ यूनिटरी ऑब्सेशंस हैं हमारे। यानी हम तौहीद के मामले में तो शिर्क करने को तैयार हैं, नहीं यहाँ के अक्सरियती मज़हब में लोगों का यही ख्याल है ना। और बाकी भी मज़ाहब में वैसे है बुनियादी तौर पर एक वहदानियत का तस्वुर, कुछ जगह वो एक्सप्रेस हो जाता है और तरह कुछ जगह नहीं हो पाता, लेकिन वहाँ हम हर किस्म का शिरक करने को तैयार हैं। मगर एक कौम, उस कौम का एक मज़हब हो और उस कौम की एक ज़बान हो और उस कौम का एक ही जो है, इनका बस नहीं चलता। वरना ये प्लास्टिक सर्जरी करा के ना पाकिस्तान की रियासत, हम सब की नाक, हम सब के होंठ, कान, आँखें, थोड़ी गर्दन, सब एक तरह की कर दें।
अब तो एक न्यूज़ भी लॉन्च कर दिया इन्होंने।
तो ये जो एक शौक है तनवो को तस्लीम न करने, शौक नहीं है बल्कि एक जो एक खौफ है तनवो को तस्लीम ना करने का, डाइवर्सिटी को रिकग्नाइज ना करने का। तो भाई अगर दुनिया में, मैं आपको बताऊं, गुलाब मुझे बहुत पसंद है, मगर मैं दुनिया के जिस बाग में जाऊं अगर वहां सिर्फ गुलाब हो, या पाकिस्तान के जिस बाग में जाऊं वहां सिर्फ गुलाब हो, तो मुझे चमेली, गेंदा याद आने शुरू हो जाएंगे कि भाई कहां गए मेरे दीगर फूल। क्योंकि गुलाब गुलाब है, क्योंकि गेंदा गेंदा है, चमेली चमेली है, रात की रानी है, चंपा चंपा है, मुझे तो हर फूल चाहिए। तो बाग तो बनता ही फूलों की तकसीर से है। तो हम पता नहीं मतलब, और उससे हमें मिला भी कुछ नहीं बाय द वे, उससे मुनकसिम हम ज़्यादा हुए हैं, फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा हुई है।
ऑब्वियसली आई मीन ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान,
नहीं आप वेस्ट पाकिस्तान में भी देख लेना आप।
हाँ,
यानी
तो चेंज नहीं हो रहा, यही तो दुख हो रहा है ना कि सीख नहीं रहे। इसमें आप जो अशराफिया को ब्लेम कर रहे हैं, इसमें स्पेसिफिकली अगर हम पंजाबी बात करें, यू फील लाइक वो पाकिस्तान प्रोजेक्ट के, क्योंकि वो इनहेरिटर समझे जा रहे थे, फोरफ्रंट पे थे, तो स्पेशली इन पंजाब वी सॉ लॉट मोर ऑफ देम अबैंडनिंग द पंजाबी लैंग्वेज एंड अडॉप्टिंग द उर्दू लैंग्वेज बिकॉज दे वर सीन एज द यू नो द फोर बेयरर्स ऑफ द पाकिस्तान प्रोजेक्ट।
पार्टली येस, लेकिन 100-150 साल से अंग्रेज़ ने नाफिज़ किया हुआ था, उनको आती भी तो वही ज़बान थी ना, पढ़ते भी 4-5 generations, 6 generations जब गुजर गई। भगत सिंह के जो ख़त हैं वो किस ज़बान में है? भगत सिंह ने अपने दादा को या अपने छोटे भाई को जो ख़त लिखे हैं अपने डेथ सेल से, वो उर्दू में है, क्योंकि उसने सीखी उर्दू थी स्कूल में, तो वो उसी को, उसकी लिखने की ज़बान वही थी। तो ये इसमें तो इम्पोजिशन तो होता है ना। देखिए, जब स्टेट कोई चीज़ इम्पोज करती है उसके असरात तो मुरतब होते हैं। देखिए, एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है ना, स्टेट का, रियासत का समाज पे, समाज का कम्युनिटी पे, कम्युनिटी का ख़ानदान पे, ख़ानदान का फ़र्द पे। तो इसीलिए तो रोना है कि रियासत को ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए, वरना बहुत बिगाड़ पैदा हो जाएगा, मज़ीद हो जाएगा।
इसमें बीच में आपने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया तो बोला था, उस पर बाद में आएंगे तो आ जाते हैं अभी।
हाँ देखिए, कॉलोनाइजेशन ने पाकिस्तान को डिफ़ाइन किया हुआ है, और पाकिस्तान अब भी एक कॉलोनियल रियासत ही है। मैं इसको पोस्ट कॉलोनियल रियासत नहीं समझता। उसकी मैं आपको 2-3 वजूहात बयान कर देता हूँ, फिर आपकी मर्ज़ी, आप इत्तफाक करें या अख्तलाफ। बाबरी मस्जिद का जो कजिया है, जो मसला है जिसके बाद अब ये राम मंदिर बना और पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके उन्होंने एक इमारत बनाई मोदी साहब ने इलेक्शन जीतने के लिए, और वो सारे जो उस इमोशन को विप अप किया, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा भी जैसे एक कन्फ्यूजन का शिकार रहता है ना, उस सारे नहीं मगर उनकी अक्सरियत इसी तरह नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, तो वो नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो हैं उन्होंने बीजेपी को हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है।
हाउडी मोदी
तो उसने जो, और वहाँ कितने बड़े बड़े कन्वेंशन किए हैं उन्होंने, जैसे खान साहब को भी शौक हुआ था, वो मोदी मॉडल ही था ना कि वो फलां स्टेडियम में जाके लोग इकट्ठे कर लो, हमारे इमरान खान साहब, तो मोदी ने बड़ा पैसा इकट्ठा किया और वो बना दिया। देखिए राम मंदिर का मसला ये था कि उनका कहना ये है कि वहाँ बाबर ने पहले से कोई मंदिर था और उसको तोड़ के या उस पर मस्जिद बना दी। अब मसला ये है कि वो 200-300 साल उस पर कोई फसाद नहीं हुआ, फसाद उसका 19वीं सदी में हुआ उस पर पहला, और 18वीं सदी के अवाखिर में गालिबन जो मुझे याद है तो कोई एक वहाँ कोई मिशनरी आए कंपनी की हुकूमत,
क्रिश्चियन मिशनरी,
हाँ क्रिश्चियन मिशनरी आए, लेकिन वो जाहिर है कि मैं इस वक्त उनको क्रिश्चियन के लेंस से नहीं, मैं उनको इस वक्त एक
कंपनी के,
एक वेस्टर्नर ब्रॉट हियर बाय द कंपनी के लेंस से देख रहा हूँ, और उन्होंने आके ये कहीं लिख दिया कि ये मुकामी कुछ हिंदू ये कहते हैं कि यहाँ पहले राम मंदिर था, यानी ये राम की जन्मभूमि है, बात खत्म हो गई। उसके बाद कई लोगों ने, हमारे एक दोस्त हैं सजाद अजहर, उन्होंने ये जो पूरा पोठोहार रीजन है छछ धन पोठोहार, इस खत्ते की तारीख पे खासा वकी काम किया है, वो इंडिपेंडेंट के लिए लिखते भी हैं और पुराने सहाफ़ी हैं, मुख्तलिफ जगह रहे हैं, उनकी किताब बड़ी अहम है, और उसमें भी, और अभी मैं उनका एक मजमून देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि असल में जो अयोध्या है ये वाल्मीकि ने जब रामायण लिखी है तो वाल्मीकि से ये जो ये जगह है ये असल में पोठोहार में है जहां राम,
प्रेजेंट डे पाकिस्तान,
जी
ये तो आइडियाज़,
जहां लॉर्ड राम का बर्थ प्लेस जो है वो ये है, और उन्होंने उसको उस फिर उन्होंने लिखा है उस, उन्होंने दो तीन, एक कोई अंग्रेज सीनियर जनरल या मिलिट्री ऑफिसर है उसकी तारीख, और एक उसने एबट के हवाले से, जो जिनके नाम पर एबट आबाद है उनके हवाले से कोई किताब है, उनका उन्होंने तस्करा किया है। तो ये लेजेंडरी कैरेक्टर्स हैं ना। देखिए आप मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी नबी की कन्फर्म्ड आपको नहीं मालूम कि जाए पैदाइश और कहाँ वो मौजूद हैं, कहाँ मौजूद रहे हैं,
बेथलहम में जीसस
नहीं, मतलब ये उसकी कोई, यानी वो लेजेंड्स ज़्यादा हैं, हिस्टोरिकल मतलब कुछ चीज़ों का है कुछ चीज़ों का नहीं है। बेथलहम का यसू मसीह अलैहि सलाम का कहते हैं, यकीनन बहुत मुमकिन है हो सकता हो, लेकिन उनका कोई मज़ार तो कहीं नहीं है ना। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहि सलाम है, इसी तरह और, तो ये तो और पुराने लोग हैं ना, मतलब महाराज कृष्ण हैं या अपना रामचंद्र जी हैं, तो ये तो और पुराने लोग हैं ना। तो ये डिटर्मिन करना ये कैसे मुमकिन होगा कि वो कहाँ पैदा हुए जबकि कोई निशान नहीं है, तो ये सब एक तरह से एक हमारा, यानी ये सब काबिल एहतराम शख्सियात हैं, इन्होंने अपने अपने इलाकों में अपने अपने अहद में अपने अपने समाज की इस्लाह की कोशिश की है, उन्हें ठीक करने की कोशिश की है, उन्हें कुछ अखलाकियात के दर्स दिए हैं, उन्हें इंक्लूसिव बनाया है, उन्हें प्लूरल बनाया है, मतलब ख़ास तौर पर जो प्री इब्राहमिक रिलीजन्स हैं उनके यहाँ तो नेचर के साथ भी बहुत गहरा ताल्लुक है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत कंटेस्टेड बात है, और अगर आप तारीख, मतलब तारीख को समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि तारीख, मैं आपको बहुत सी बातें अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि ये कॉलोनाइजेशन की, नौ आबादियाती निज़ाम की वजह से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आज मैं जाके अंग्रेज़ों से लड़ना शुरू कर दूँ। मुझे अपनी बराबरी क्लेम करनी होगी और मुझे सीखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि ये काम सिर्फ अंग्रेज़ों ने तो नहीं किया दुनिया में, ये काम तो अरबों ने भी किया है, ये काम तो ईरानियों ने भी किया है, ये काम मुग़लों ने भी किया है, एम्पायर्स ऐसे ही होती हैं। अब हमें आगे बढ़ना है और ये जो ह्यूमन एक कंडीशन है इसको तब्दील करना है, और वो एक उसमें कलेक्टिव एफर्ट भी होंगे और लोकल स्ट्रगल्स भी होंगी।
इसमें मैं श्रीलंका भी गया था और अगेन आई माइट बी मिस्टेकन, बट वहाँ पे भी कुछ लोग क्लेम करते थे कि एक्चुअली राम की जो एक्चुअल बर्थ प्लेस है वो श्रीलंका है।
जी जी बिल्कुल।
तो वहाँ पर भी
जी बिल्कुल है,
आइडियाज हैं, ब्रिजेस भी बनाए हुए हैं, रामायण फॉल्स भी हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ फोक लोर इन श्रीलंका एज वेल एंड आई एम श्योर सम रिसर्च एज वेल।
नॉर्थ और साउथ के उसमें भी फर्क है ना, जो नॉर्थ में क्लेम रावण जो है वो साउथ में कुछ लोगों के लिए गॉड है, साउथ इंडिया में श्रीलंका, क्योंकि लंका ही कहते हैं कि रावण लंका का राजा था ना, जो सीता मैया को उठा के ले गया था, तो उनके, और आप जो है नॉर्थ इंडिया में, हमारा जो एरिया है उसमें हम रावण की को दशहरे पे आग लगाते हैं, और जो भी मतलब है सिलसिला, और पूरा जो अग्नि परीक्षा का कॉन्सेप्ट है और बहुत सारी चीज़, तो ये तो 10 कोस पे ज़बान बदल जाती है 12 कोस पे, और इसी तरह यानी बहुत जल्द लहजे में फ़र्क आ जाता है, मुहावरे बदल जाते हैं, इसी तरह फोकलोर भी बदलता है, इसी तरह मिथ्स और माइथोलॉजीज भी बदलती हैं, लेजेंड्स भी बदलते हैं, ऐसे ही है।
इस डू यू फील के पाकिस्तान में वी ऑल्सो मिस आउट ऑन आर कल्चरल रूट्स, बिकॉज रीजन तो मोस्टली एक ही था, तो वो फोक टेल्स जो हैं, रूट्स जो हैं, अक्सर जो लाहौर का थिएटर कल्चर है उसके सारे रूट संस्कृत थिएटर में, बट बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू बी एसोसिएटेड बैक टू संस्कृत,
बच तो नहीं सकते आप उससे,
बट कोशिश तो हमने बहुत
की ना, तो फिर वो आप भाई करते रहें कोशिश, आप कितनी कोशिश कर लें आप उससे बच तो नहीं सकते, और इस वक्त जो भारत में हो रहा है वो भी नहीं बच सकते, उनका भी दिमाग खराब हो गया है, मैं आपको बताऊँ, उनका दौरे ज़ियाउलक अब है, वो इस मामले में एक चीज़ है जिसमें इंडिया हमसे लेट है, बाकी में तो चांद वान पे पहुंच चुके हैं, कुछ दिन में शायद मरीख पे भी चले जाएं, एक चीज में वो 40 साल 30 साल लगे उन्हें हम तक हम इसे कैचअप करने में, वो भी एक हिस्ट्री को इरेज करके, मेमोरी को इरेज करके एक नई तारीख बनाने के चक्कर में लग गए। पाकिस्तान में ये काम हुआ लेकिन पाकिस्तान में बहुत रेजिस्टेंस थी,
इंडिया में भी रेजिस्टेंस तो बहुत
नहीं, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि पाकिस्तान में बहुत रेजिस्टेंस थी, उसकी वजह से ये काम मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन खराबी बहुत पैदा हुई। अब 25 करोड़ पाकिस्तान है और 1.5 अरब इंडिया है, अब आप बताएं कि 20 करोड़ लोग खराब हो जाएं और 1 अरब 20 करोड़ खराब हो जाएं, तो खराबी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा हिंदुस्तान में, पूरा वो नहीं कर पाएंगे, उसको रेजिस्ट करेंगे लोग, लेकिन फिलहाल तो मोदी साहब कहीं नहीं जा रहे।
आई थिंक इंडिया का ये एक एज ये है कि उन्होंने स्टेट्स को ना, नॉट सॉवरेन एज नेशन स्टेट्स, बट देयर इज अ लॉट मोर स्टेट सॉवरेनिटी, वो वन यूनिटाइजेशन वाले मसले में
वो तो
शुरू शुरू में नहीं पड़े।
हाँ।
तो व्हाटएवर मोदी का इन्फ्लुएंस जिसको काउ बेल्ट कहते हैं उसमें बहुत ज्यादा है, साउथ में इतना नहीं है।
नहीं तो गुजरात तो काउ बेल्ट में नहीं है ना,
बट
मोदी साहब मतलब आप ये देखिए ना, ये एक दिलचस्प बात है, क्योंकि ये अगर देखना ये है कि आसाम से लेके और पंजाब तक, और फिर जो हिमाचल से लेके और राजकुमारी तक, बिल्कुल केरला और वहाँ तक, मोदी की जो फॉलोइंग है वो 1/4 होगी, 30% होगी, क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है ना उनके यहाँ भी। लेकिन जो आप ना एक पूरे एक मुल्क में एक साथ रहने वालों का, उन्हें आप कौम ना कहें, कौमी कह लें, कौमियतें कह लें, लेकिन एक स्टेटहुड जो है ना वो तो है, और वो जो स्टेट है वो उनका तखयल तब्दील कर देती है, इमेजिनेशन बदल जाता है, ये एक बड़ा मसला है। तो पाकिस्तान में उन लोगों पे भी असरात हैं, यानी मुझ पे और आप पे भी असरात हैं उसी नैरेटिव के, उसी पूरे एक उसी उस तारीख के जो गलत या सही हमें पढ़ाई गई है, या डिस्टॉर्ट करके पढ़ाई गई है, या नहीं पढ़ाई गई, हमें तो खैर माशाल्लाह सिरे से पढ़ाते ही नहीं है ना, इंडिया में वो इन्वेंट कर रहे हैं। तो ये दोनों जगह मसला है, लेकिन देखिए सिविलाइजेशन जो होती है ना, तहजीब जो होती है, उसका जुग्राफिए से कोई ताल्लुक नहीं होता, गालिब गालिब है, चाहे वो दिल्ली में मदफून है या अगर वो कराची में मदफून होता, वो गालिब है। तो सिविलाइजेशन के मार्कर्स, आइडेंटिटी के, सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी के मार्कर्स नेशनल या स्टेट आइडेंटिटी के मार्कर्स से मुख्तलिफ होते हैं। हमारे लिए ईरान के शायर कितने हम हैं, फारसी के शायर जो हैं, क्योंकि वो हमारी एक सिविलाइजेशनल, एक उनके साथ देखिए हमारा जो कल्चर है या जो हमारी जो सिविलाइजेशन है या जो इवॉल्विंग सिविलाइजेशन है और उसका जो बैकग्राउंड है, ये एक्चुअली एक अरबो पर्शियनट कल्चर, टर्किक कल्चर और बुनियाद में इसकी वैदिक कल्चर है। ये उसके अमेलगम से आपकी ये हिंद मुस्लिम तहजीब जिसे आप कहते हैं वो जन्म लेती है और उस पर फिर ग्राफ्टिक वेस्टर्न सिविलाइजेशन का लगा है। अलहदा तो दुनिया में कोई चीज़ किसी से नहीं होती और कोई चीज़ शुद्ध नहीं होती, हर चीज़ मिशरमेल होती है।
कुछ समझ नहीं आया इन लफ्ज़ों के बाद, कोई चीज़ प्योर नहीं होती, एवरीथिंग इज
नहीं वो मतलब
आप सही थी, कंपनी का नाम था मिशरमेल
प्रोडक्शन। हाँ, तो मिशरमेल का मतलब ये कि व्हेन आप जब आप रागों को फ्यूज करते हैं आसानी के लिए, वैसे तो इसकी तफ, और शुद्ध का मतलब है चेस्ट प्योर। तो कोई प्योरिटी के चक्कर में, ये जो प्योरिटी का जो चक्कर है ना पाकिस्तान का, एक मसला ये है कि ये अपने आप को चाहता है कि हर चीज़ यहाँ शफाफ धुली धुलाई वैसे हो जाए जैसे इसकी इसके इसके इसका मुक्तदरा इसके ताकतवर लोग इसे देखना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता।
आपको अगर मैं बोलूं कि यार मैं ये बजट देता हूँ, जिस तरह अगर आप यूरोप में जाएं तो हर गाँव में जो भी उनका बड़ा आर्टिस्ट है, म्यूज़ियम है, उसका घर है, आप घूम रहे हो तो लोग बताते हैं डिकार्ड्स यहाँ रहता था, ये पाकिस्तान में वेयर वुड यू स्टार्ट, किन लोगों के हमें म्यूज़ियम बनाने चाहिए, किन लोगों के बारे में हमें बताना चाहिए, शहर बाय शहर जाकर मुझे बताएं आप क्या क्या बनाएंगे, कहाँ कहाँ बनाएंगे।
भाई देखिए, अगर हम शुरू करते हैं कहाँ से शुरू करें, गिलगित बल्तिस्तान से शुरू करें। गिलगित बल्तिस्तान के जो मकामी शायर हैं जो उनकी तारीख़ में गुजरे हैं, वहाँ 7 या 9 बड़ी ज़बानें बोली जाती हैं, कहीं यानी गिशना, ब्रुशिस्की, वखी, बल्ती, मतलब ये 4 तो आप लोगों ने नाम सुना ही है। तो उनके जो शुराएँ हैं उनके नाम पर मैं ये नहीं कहता कि आप उनके मुजस्मे लगा दें, मैं कहता हूँ आप एक कल्चरल सेंटर बना दें छोटा सा जिस भी शहर में वो रहते थे।
नाम बताएं उनके नाम, कौन कौन
नहीं गिल, मुझे
कराची के बता दें।
हाँ नहीं वहाँ मैं आ जाता हूँ।
अच्छा,
रहमान बाबा के नाम पर कुछ चीज़ें हैं भी, वैसे मैं आपको बताऊं कुछ अकेडमीज़ हैं, कुछ हैं चीज़ें, लेकिन उनको सेलिब्रेट करना और उनको एक्चुअली महज निसाब में नहीं शामिल करना बल्कि उनका दिन मनाना, उस पर गुफ्तगु होना, ये बहुत ज़रूरी है।
तो हमें लाइक कराची में शाहदुल लतीफ़ भिटाई दिन की छुट्टी होती है, आप मेरे साथ कराची चले माइक लेके सड़क पे लोगों को बताएं कौन है, बोले हाँ कौन है।
नहीं वो कराची में तो एक बहुत खौफनाक किस्म की एक एक तकसीम है ना, मतलब कराची में, कराची से मुराद ये है कि सिंध में, मतलब एक तो मुझे यही समझ में नहीं आता कि कराची और सिंध लोग क्यों कहते हैं। सिंध का हिस्सा है कराची, अच्छा लगता है किसी को, नहीं लगता। ये कोई सेटलमेंट नहीं है इसराइल की तरह कि आप बाहर से आएं, अब तो खैर बाहर से भी कोई नहीं आया हुआ, 3-3 जनरेशन गुजर गई हैं, सिंध का ही पानी पी रहे हैं, वहीं का आटा खा रहे हैं, वहीं का गंदम है, वहीं का चावल है। तो ये सिंध की जो, हाँ इंतज़ामी तौर पे आप 4 डिवीज़न बना दें, 5 डिवीज़न बना दें, आप उसको बेहतर कर लें, मैनेजमेंट बेहतर कर लें, कराची के साथ ज़्यादती भी बहुत हुई है, शहर की हैसियत से उसकी अपनी खुद मुख्तार बल्दियाती हुकूमत होनी चाहिए, इसी तरह हैदराबाद की, इसी तरह सखर की, इसी तरह लाड़काना की, इसी तरह मीरपुर खास की, मिट्टी की, वो एक वो तफसील अलहदा है, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजेरियल इशूज़ हैं, लोगों के मसाइल कैसे हल हों, म्यूनिसिपल इशूज़ क्या हैं, वो अलहदा बात है। लेकिन सिंध में तो एक तो वन यूनिट ने बहुत नुकसान पहुंचाया, चूँकि अनफॉर्चुनेटली जो जो महाजरीन आए थे वो विफाक की के हामी थे और सिंध की अपनी एक सकाफ़ती, सियासी, समाजी, तारीख़ी हैसियत है। देखिए एक नफसियाती मसला भी था महाजरीन का ना, महाजरीन आए थे पाकिस्तान, पाकिस्तान तो कोई जगह ही नहीं थी, सिंध था, पंजाब था, कश्मीर था, गिलगित बल्तिस्तान था और उस ज़माने का शुमाल मगरबी सरहदी सूबा था जो अब खैबर पख्तूनख्वा है, ब्रिटिश बलूचिस्तान था, बलूचिस्तान की स्टेट थी कलात की, बहावलपुर की स्टेट थी, खैरपुर की स्टेट थी, स्वात, तो ये तो लोग इनकी अपनी अपनी लोकल आइडेंटिटीज़ थी। अब बहुत ज़्यादती मतलब लुट पिट के भी बहुत लोग आए और पंजाब से जो लोग आए वो उनका सेटल होना आसान था, कल्चरली भी आसान था, जबान का भी कोई मसला नहीं था और जिसको कहते हैं रैंड बैंड सैन बूदोबाश वो भी ज़ाहिर है, तो लेकिन टेंशन रहे, ऐसा नहीं है कि जब ज़मीनें यहाँ अलॉट हुई हैं कुछ वहाँ की अग्रेरियन कम्युनिटीज़ को तो तो टेंशन पंजाब में भी रहे क्योंकि पंजाब बहुत डाइवर्स है उस वो सारी, लेकिन असिमिलेशन आसान था। लेकिन सिंध में एक तो कॉन्सेंट्रेशन हुआ सारा, कराची को कैपिटल आपने बनाया और सिंध से अलग कर दिया। मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि कायदे आजम को कराची को कैपिटल बना के सिंध से अलग करने की क्या ज़रूरत थी। यानी बिल्कुल ऐसे ही है कि आप लाहौर को कैपिटल बना के पंजाब से अलग कर दें या पेशावर को कैपिटल बना के पाकिस्तान का और खैबर पख्तूनख्वा से अलग कर, तो आप वहाँ पर कुछ हिस्सा डिवेलप कर लेते। जैसे पंजाब में आपने कोई लैंड लेके डिवेलप किया तो ये कर लेते नॉर्थ कराची वगैरह को और उसको कोई फेडरल एरिया डिक्लेयर कर देते, लेकिन कराची को तो एक तारीख मतलब सिंध का दारुल हुकूमत था। सिंध असेंबली को आपने नेशनल असेंबली बना दिया तो, और आपने जो है वो यानी कराची में जो यूनिवर्सिटी बनाई उसका नाम कराची यूनिवर्सिटी रखा और सिंध यूनिवर्सिटी हैदराबाद। तो ये सारे कुछ काम किए इन्होंने गलत, हमारे जो बानियान थे ये इनसे गलती हुई। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइड लीड्स टू पॉलिटिकल डिवाइड, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव इन द सेंस के नॉट इन टर्म्स ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन बट अ पॉलिटिकल पॉलिटिकल जो एक डिवाइड होती है ना कि आपने सूबा अलग कर दिया। सो उसमें एक मसला ये पैदा हुआ जिसको समझने की ज़रूरत है कि कराची में तो 1970 तक सिंधी नहीं पढ़ाई जाती थी, ख़त्म कर दी थी स्कूलों से ना, तो अब उन बच्चों का कसूर तो नहीं है जो 1948 में जब कराची को अलग किया आपने और 1970 तक वो उन्होंने तो नहीं पढ़ी सिंधी ना, तो एक आपने लिंग्विस्टिक डिवाइड क्रिएट की। और जो अंदरून सिंध जिसे आप कहते हैं, जो मैं समझता हूँ कि करेक्ट टर्म नहीं है, लेकिन सिंध के दीगर इलाकों में जो अब जो जनरेशन है, यानी अब उर्दू स्पीकिंग की टर्म इस्तेमाल होती है, उस पर भी मुझे इतराज़ है क्योंकि ये 12-15 सूबों के लोग की आइडेंटिटी नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदुस्तान जाएं तो उर्दू स्पीकिंग तो कोई नहीं है, कोई राजस्थानी है, कोई गुजराती है, कोई जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई उत्तराचल का है वगैरह, वो एक अलहदा बहस है, मैं डाइग्रेस बहुत करता हूँ।
तो सारी बातें कर चुका हूं,
कमिंग बैक टू दिस सिंध का इशू, तो मेरा तो ख्याल है कि ये जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं सिंध में उन्हें साथ बैठना पड़ेगा, और बिल्कुल वो ज़ूल सानी सूबा हो सकता है। और मैं अब जब मेरे बच्चे अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से जर्मनी पोलैंड या डेनमार्क चला जाऊँ तो सीखेंगे ना वहाँ की ज़बान, सिर्फ अंग्रेज़ी तो नहीं बोल सकते ना, वो उनको सीखनी पड़ेगी अगर वो स्कूल जाते हैं तो। आपको क्या परेशानी है भाई, आप क्यों नहीं सिंधी पढ़ सकते? या अगर आप सिंधी नहीं पढ़ सकते, अगर आप यानी या अगर फ़र्ज़ करें कि आप सिंधी हैं तो आप कोई और ज़बान क्यों नहीं पढ़ सकते? तो आप पढ़ें, मल्टीलिंगुअल खित्ता है ये।
इट गोज बैक टू दैट आइडिया ऑफ सप्रेशन ऑफ रेलिगेशन, जब आप दूसरी आइडेंटिटी को वर्थवाइल ही नहीं समझेंगे और आप समझेंगे कि
नहीं, बट ऑफ जोक्स बना लेंगे। और एक ये सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स शहजाद पैदा किन लोगों में होता है? सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा ही उन लोगों में होता है जिनके जिनके क्ले फीट होते हैं।
इसराइल इसमें कराची पे वापस आते हैं, वो सवाल रह गया किन किन के बनाएंगे आप शहरों के साथ लोगों?
भाई कराची में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का तो बनना ही चाहिए, शेख हयाज का, कराची में शेख हयाज रहे हैं, मैं उनसे प्रिंस कॉम्प्लेक्स में वो रहते थे, उनसे मिलने गया हूँ, और समंदर पे उनकी बैठे बहुत खुश होते थे, सी व्यू भी जाते थे, फिर ज़यीफ़ हो गए थे, लेकिन शेख हयाज हैं। उसके बाद जोश मली आबादी हैं, हालांकि जोश मली आबादी मदफून हमारे शहर में अब इस्लामाबाद में है, लेकिन जोश मली आबादी को सेलिब्रेट करना चाहिए कराची में। कराची में फहमीदा रियाज को, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा, उनका हैदराबाद में भी हो सकता है, कराची में भी हो सकता है, तो बहुत लोग हैं और आर्टिस्ट्स हैं कराची, मतलब अली इमाम थे, शाहिद सज्जाद इतने बड़े स्कल्प्टर कराची में गुजरे हैं, बहुत लोग हैं, मतलब आप नाम लेते चले जाएं, और जो असातिज़ा बड़े गुजरे हैं उनके होने चाहिए। करार हुसैन साहब कराची में मदफून हैं, कोई मेमोरियल, कोई इस तरह की चीज़ें, तो बेशुमार मतलब लोग हैं। इसी तरह हैदराबाद है, इसी तरह सखर, मतलब अब वो मुझे याद नहीं रहता कि कौन किसका, यानी नाम कोई ज़रूरी नहीं कि याद आ जाए, लेकिन जो
दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू, ये जो भी सुन रहा है स्टेट में, अब मैं जाके सिस्टीन चैपल देखा, उसके बाहर 15 मिनट का पहले लेक्चर देते हैं कि भाई व्हाट मेक्स सिस्टीन चैपल ग्रेट, फिर आप अंदर जाते हैं, आप बोलते हैं भाई यार वाह
भाई,
फ्रे हॉल में आप जाते हैं, आप बोलते हैं ये साधु ने बनाया था, चलो आगे, अबे भाई
नहीं वो जो देखें जो उन्होंने उनके जो म्यूरल्स हैं, फ्रेस्कोज हैं, या जो उन्होंने बड़े वो बनाए हैं, पेंट किए हैं, वहाँ उन्होंने सब प्रिजर्व किया है ना, तो हमारे यहाँ तो बस नहीं चलता फ्रेयर हॉल किसी तरह से गिरे और यहाँ पे एक प्लाजा बनाने। भाई आपने किया क्या है, आपने पार्क्स की जगह मॉल्स बना दिए हैं। पहले लोग पार्क में पिकनिक के लिए जाते थे, अब मॉल में जाते हैं। और मतलब एक एक कोई 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 अपनी तारीख को प्रिजर्व करने से या उसके कंजर्वेशन से कोई कोई दिलचस्पी नहीं है, चूंकि तारीख से कोई ताल्लुक नहीं रखा। अच्छा, होता क्या है, मैं आपसे इससे पहले एक मुतजाद बात कह रहा था कि आप तारीख की बुनियाद पे मुस्तकबिल के फैसले नहीं करते, मगर आप तारीख में जितना पीछे देख सकते हैं मुस्तकबिल में उतना ही आगे देख सकते हैं। वो अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। फिर आप उस हिस्ट्री सीखें, डिनाइल में ना जाएं, उसको मुस्तरद ना करें। अगर जो हिस्ट्री से आपको पता चलता है या आज हाल में भी अगर फैक्ट्स जो हैं वो आपके प्री कंसीव्ड आइडियाज से मुतसादिम होते हैं तो आप फैक्ट्स को रिजेक्ट कर देते हैं और पहले से तयशुदा नज़रियात पर कायम रहते हैं। तो ये पाकिस्तान में बदलने की ज़रूरत है। और तारीख को सीखें, लेकिन उसको तारीख को सीख के जिनके साथ आपकी कोई लड़ाइयाँ फसादात मसाइल रहे हैं उनसे सीख के मुस्तकबिल में उन्हें ख़त्म करें, उन्हें चलाते ना रहें। ये कोई कबाइली लड़ाई नहीं है जो नस्ल दर नस्ल हम चलाते रहें। तो हो गई गलती, ठीक है, 100 साल बरतानिया और फ्रांस लड़ते रहे, 100 साल की जंग है उनकी।
इसमें आपने कराची का जिक्र किया, आमिर मुगल ने भी ख़ास पूछा है कि आपसे पूछूँ मैं कि आपकी मेमोरीज ऑफ कराची क्या हैं और आपने ओवर द ईयर्स कैसे कराची को बदलता हुआ देखा।
देखिए, मेरी मेमोरीज ऑफ कराची जो हैं वो नहायत शानदार से नहायत तकलीफ़ देह हैं। 19 जब मैं पैदा हुआ हूँ तो अयूब खान का वो अवाखिर का दौर है, जा रहे हूँ, तो ज़ाहिर है मेरी कोई मेमोरीज नहीं है। 71 की वॉर की भी बहुत थोड़ी मेमोरीज हैं, लेकिन 70 की दहाई का कराची मैंने देखा है। और 70 की दहाई का कराची जो था और फिर 80 की दहाई का कराची, 70 में मैं बच्चा था ज़ाहिर है, बहुत छोटा था, लेकिन मेमोरीज तो आपकी होती हैं। फिर 80 की दहाई में तो मुझे याद है। लेकिन जो मेरा जो कराची में अच्छा वक्त जिसको मैं समझता हूँ शहर के लिए, यानी वो जो मेरी याददाश्त में है वो कोई 19 समझ लें बहुत छोटे बच्चे मिड 70s से लेके मिड 80s तक है। और ज़िया के आने के बावजूद हालात इतने ख़राब नहीं थे। और ये पूरा का पूरा जो MQM का बनना, जिस तरह से MQM बनाई गई,
किस तरह बनाई गई,
फ़ौज ने बनाई थी ना ज़ियाउल हक के कहने पे, मतलब ज़ियाउल हक ने बनाई थी ना। जैसे बाद में फिर PTI का एक्सपेरिमेंट भी किया ना, स्केल अप कर दिया ना उसी एक्सपेरिमेंट को जो MQM का किया था इन्होंने कराची में। तो वो सेंटिमेंट्स तो हर जगह हर तरह के होते हैं ना, तो आप किसी भी फ्रेंच सेंटिमेंट को मेन स्ट्रीम कर दें और उसको रिसोर्स कर दें और फिर जब वो आपकी बात से ज़रा सा इधर उधर हो तो फिर उसे बेतहाशा मारें। ये सब आपने देखा, ये इस वक्त आप PTI के साथ होता देख रहे हैं। उस सतह पे नहीं है जो MQM के साथ हुआ है, क्योंकि ये वेपनाइज नहीं है, वो वेपनाइज थे। लेकिन ये MQM का बिल्कुल यानी पीपल्स पार्टी को कमज़ोर करने के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पर मैं सिंध की पार्टी नहीं थी। पीपल्स पार्टी पंजाब से जीत के आई थी 70 के इलेक्शन में, और पीपल्स पार्टी की अक्सरियती नशस्तें थी, यानी पंजाब से अक्सरियत थी पीपल्स पार्टी की। बिल्कुल इसी तरह कराची के जो लोग थे, जिन्हें अब आप आसानी के लिए उर्दू स्पीकिंग कहते हैं, जिसमें गुजराती स्पीकिंग लोग भी शामिल हैं, जिसमें और दीगर हिंदुस्तान की ज़बानें बोलने वाले काठियावाड़ी मारवाड़ी अपना केरला के लोग सब शामिल हैं, बेंगलोर के लोग, चेन्नई के, मद्रास के लोग, लेकिन अब आप उन्हें एक उनकी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी या लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के तौर पर उन्हें उर्दू स्पीकिंग कहते हैं। हालांकि उनसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा उर्दू जो है वो लाहौर में बोली जाती है इन टर्म्स ऑफ द यूज़ ऑफ द लैंग्वेज। लेकिन वो जो सारे लोग थे उनमें भी बहुत बड़ी तादाद में लोग पीपल्स पार्टी के साथ थे, तो आपने उनको अलग कर दिया। तो जब वन यूनिट ख़त्म होने के बाद लसानी फसादात वगैरह हुए हैं और उन लसानी फसादात के बाद एक जो रेकन्सिलिएशन की फ़ज़ा बनना शुरू हुई है उसको डिस्टरप्ट कर दिया है। मिड लेट 80s में शादियाँ होना शुरू हो गई थी। मेरे अपने ख़ानदान, मेरे अपने जो फर्स्ट कज़न्स हैं सारे, मतलब वो हम आपस, यानी हम बोलते हैं आपस में उर्दू या अंग्रेज़ी में हैं क्योंकि कुछ बाहर रहते हैं, लेकिन हम अगर अपनी यानी अपने पूरे फर्स्ट कज़न्स को मैं देखूँ तो हम 5 मुख्तलिफ हमारी मदर टंग हैं। तो ये शुरू हो गया था ना, ये काम तो शुरू हो गया था।
व्हाट्स योर एथनिक बैकग्राउंड, यू आर फ्रॉम?
देखिए, मैं वो तो उस पर मैं बाद में आता हूँ। मैं भी मिक्स्ड मखलूत नस्ल हूँ,
मिशर महल।
हाँ, तो वो और वो एथनिसिटी असल में तो पूरे नॉर्थ इंडिया की लार्जली एक ही एथनिसिटी है, लेकिन चले आसानी के लिए अलग अलग करके हम बता देते हैं कि फलां क्या है फलां क्या है. लेकिन हमारे मतलब मैं मेरे जो फर्स्ट कजन्स और उनकी वाइव्स को भी अगर आप मिला लें तो मैं अगर गिनना शुरू करूं तो हम मेरे फर्स्ट कजन्स में से कुछ की मादरी ज़बान सिंधी है, कुछ की पंजाबी है, कुछ की तगालोग है जो कि फ़िलीपींस में बोली जाती है क्योंकि मेरी एक मोमानी जो है उनका ताल्लुक फ़िलीपींस है, उन्हीं में से कुछ की अंग्रेज़ी है और कुछ की उर्दू है, ये पांच.
और आपकी और आपके वालदैन की
क्या? हमने जो हमारे घर में तो जो प्रीडोमिनेंटली जो सबसे ज़्यादा ज़बान बोली जाती थी वो उर्दू है, लेकिन जो मेरे वालिद थे उनका चूंकि ताल्लुक़ लखनऊ से था और उनका ख़ानदान यानी मेरे जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे वो श्रीनगर से लखनऊ में बस गए थे जाके, लेकिन मेरे वालिद की तालीम वो 1942 में लाहौर आ गए थे क्योंकि मेरे दादा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में थे तो मेरे वालिद को वहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में दाखला नहीं दिया जा रहा था तो वो लाहौर ओरिएंटल कॉलेज से पढ़े, तो वो लाहौर आ गए थे 1942 में. और ज़ाहिर है कि मेरे जो उनका पूरा ख़ानदान है वो आप समझ लें कि लखनऊ का ही है, वो श्रीनगर से तो वहाँ आ गए थे ना, तो लेकिन वैसे वो कश्मीरी थे मगर वो कश्मीरी पंजाब में सेटल नहीं थे, वो लखनऊ में सेटल थे. और मेरी जो वालदा हैं, मेरे जो नाना थे वो अमृतसर के थे जो कि मशरक़ी पंजाब है, लेकिन उन्होंने अलीगढ़ में तालीम हासिल की थी. और जो मेरी नानी थी वो बरेली की थी. और जो पंजाबी मैंने सीखी वो मेरे नाना ने मुझे बाबुल्ले शाह पढ़ाया तो मैंने उन्होंने पढ़ा दिया था. गुफ्तगू वो भी उर्दू में करते थे लेकिन पढ़ा देते थे.
सही, पैन नॉर्थ इंडियन एटलीस्ट इफ नॉट इंडियन.
हाँ, लेकिन मेरा ख्याल ये बड़ी कॉमन बातें थी उस ज़माने में, ये बड़ी कॉमन बातें थी. तो ये इनको नहीं हमें भूलना चाहिए कि और इन बुनियादों पे फैसले नहीं होने चाहिए.
तो वापस आए कज़न 80s में, कैसे आपने बदलते हुए देखा?
80s में इस तरह से बदलते हुए देखा कि बुशरा जैदी का जो वाक़या हुआ है तो मैं उस वक्त NED में उसी साल दाखिल हुआ था, उसी साल 85 में, और बस फिर शहर को आग लग गई. उसके बाद 86 में MQM 84 में बन गई ना.
अच्छा,
लेकिन MQM ने नहीं,
जमात नहीं,
नहीं जमात भी थी. जमात तो यार जमात तो ज़ियाउलक की बी टीम थी ना. अब वो हाफिज़ साहब नईमुर रहमान साहब जब खड़े होकर दास्तानें बयान करते हैं तो मैं सुन के बस हैरान होता हूँ. लेकिन ये
मैंने ये बातें की थी, मुझसे नाराज हो गए थे.
नहीं, ये अलहदा बात है. मैं उनकी बारे में ये बात नहीं कह रहा. मैं कह रहा हूँ कि उनकी जमात की तारीख जो है
वो एस्टैब्लिशमेंट और जमात का हमेशा से गठजोड़
है. देखिए उसमें मैं अर्ज करूँ कि लेकिन मैं मुझे ईमानदारी से ये कहना पड़ेगा कि सत्तार अफगानी साहब जो कराची के मेयर थे, बेशक ज़िया का ही ज़माना था, वो बहुत नेक आदमी थे और ईमानदार आदमी थे और बहुत अच्छे मेयर थे कराची के, ये मैं मानता हूँ. मगर जमात की जो एक आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स है उसके तो मसाइल रहे हैं ना, उससे कैसे आप मतलब मैंने गफूर साहब का आपसे जिक्र किया, यानी मुकालमा होना चाहिए, सारी बातें अपनी जगह, लेकिन उनकी कोई यानी कोई सीध में मुझे बात समझ में नहीं आती है कि जो वो दावा करते हैं ना कि हम भाई बहुत ही एक शफाफ और ज़बरदस्त मतलब ईमानदारी से हमने सियासत की, ऐसा है नहीं. चूंकि एक फिक्री बदउनवानी भी होती है ना. बदउनवानी जो है वो सिर्फ माली तो नहीं होती. ऑनेस्टी जो है इट्स नॉट जस्ट फाइनेंशियल ऑनेस्टी दैट मैटर्स, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी मैटर्स इक्वली. तो 85 से वो शुरू हुआ, फिर 86 में अलीगढ़ कस्बा में जब हमला हुआ है, फिर पठान महाजिर फसाद उस जमाने में उसे कहते थे, जो बिहारी पहले वो कहलाता था पठान बिहारी फसाद, उरंगी टाउन में आग लग गई और उससे मुलहका इलाकों में, और फिर वो बिहारी पठान फसाद महाजिर पठान फसाद हो गया चूंकि वो महाजिर आइडेंटिटी MQM ने उस वक्त क्रिएट कर दी, तो बिहारी उसमें जाहिर है, जो बिहारियों की बड़ी तादाद पीपल्स पार्टी के साथ थी हिस्टोरिकली जो कराची में बसे हुए बिहारी हैं, चूंकि भुट्टो साहब ने उनको रिपैट्रिएट किया था, तो वो फिर साहब फिर MQM का दौर आपने देखा. और फिर MQM ने नवंबर 87 में स्वीप किए कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शंस, ज़िया का ज़माना है वो, और आप 28 बरस के थे गालिबन, फारूक सत्तार हमारे भाई फारूक सत्तार जब ये मेयर बने, मेडिसिन पर करके फारे हुए थे इमरान फारूक भी, ये सारे अजीम तारिक, उसके बाद आग लग गई. उसके बाद फिर आपने देखा कि उस आग को बुझा और इनके इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए पाकिस्तान की रियासत ने MQM हकीकी बना दी और उनको भी आम कर दिया, तो आपने देखा क्या हुआ. और फिर खुद रियासत ने ऑपरेशन 90s में शुरू कर दिया. मैं 1995 के बाद से मुस्तकिलन कराची में नहीं रहा, लेकिन उसका इस पर कोई ताल्लुक नहीं है। वो मैं पहले काम करने बाहर चला गया था एमनेस्टी इंटरनेशनल में, उसके बाद मैं वापस आया, एक दो साल रहा, लेकिन मैं कुछ वक्त यहाँ इस्लामाबाद भी गुजारता था। फिर मैं पढ़ने चला गया बरतानिया, फिर मैं वापस आके तकरीबन उसके बाद से यहीं हूँ। बीच में जाता आता रहता हूँ, कुछ महीने अमेरिका में गुजार दिए, और 5 बरस से 5.25 बरस से मैं लाहौर और इस्लामाबाद के मैं आप समझें कि बिटवीन द टू सिटीज़ रहता हूँ।
सर, लोगों के भी थोड़े से सवाल थे इस पॉडकास्ट का। एक मेरा रिग्रेट ये रहा है कि मैं आयर रहमान साहब की टीम से बात कर रहा था, पॉडकास्ट कैजुअल करने का नहीं हो सका। व्हाट्स हिज लेगेसी एंड व्हाट हैव वी लॉस्ट?
आयर रहमान साहब, आपको पता है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उन्होंने ज़ाहिर है कि बिल्कुल इब्तदाई लोगों में थे, लेकिन बहसियत डायरेक्टर उन्होंने 1990 में ज्वाइन किया। मैं उनकी जो खिदमात हैं जर्नलिस्टिक और इन अदर यू नो एज अ पब्लिक इंटेलेक्चुअल उस पर आता हूँ, लेकिन मेरा जो उनके साथ ताल्लुक है वो बहुत बचपन से है, चूँकि वो मेरे वालिद से उनके मरासिम थे। आई रहमान साहब के तो खैर हज़ारहा दोस्त थे, तो आप समझ लें कि उसमें एक मेरे वालिद भी शामिल थे। तो वो लेकिन ज़ाहिर है मैं, और वैसे भी यानी पीपल न्यू आई रहमान, और ये टीवी वगैरह का तो ज़माना इतना था नहीं ना, एक ही टीवी था, लेकिन जो अखबार थे बड़े इंपॉर्टेंट थे, और वो प्रिंट जर्नलिस्ट थे, व्यू पॉइंट से वाबस्ता रहे, जेल भी काटी, व्यू पॉइंट से पहले पाकिस्तान टाइम्स के साथ भी रहे, डॉन में कॉलम आखिरी कॉलम उनका उनके इंतकाल से 4 रोज़ कबल छपा है। तो वो रहमान साहब तो एक नाबगे रोज़गार जिसे हम कहते हैं ना, कि एक बिल्कुल मतलब एक और ही तरह के आदमी थे, इस तरह के लोग बनना बंद हो गए। और लेगेसी उनकी यही है कि स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर विदाउट रेजिंग योर वॉइस। रेजिंग योर वॉइस का मतलब दूसरे उसमें कह रहा हूँ, मतलब है कि नॉट इन अ हाई पिच्ड वॉइस, बस कंटिन्यूसली स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर। और उसमें उनका मिजाज मुख्तलिफ था, आसमा जहांगीर का मिजाज मुख्तलिफ था। आसमा जो थी वो बहुत फायरी थी, रहमान साहब बहुत धीमे कंपोज्ड आदमी थे, लेकिन वो बहुत लंबी स्ट्रगल में यकीन रखते थे, तो वो जज्बाती नहीं होते थे, मगर कहते वो वही थे जो उन्हें कहना होता था, और बार बार वही कहते थे जो उन्हें कहना होता था। तो अभी उनकी ताज़ा किताब आई है, जो लोग सुन रहे हैं उनको लेनी चाहिए अगर वो उनको दिलचस्पी हो, अ लाइफ टाइम ऑफ डिसेंट, ये पॉस्थ्यूमसली छपी है, छोटी सी किताब है, बहुत तफसीली नहीं है, अनफॉर्चुनेटली कहीं कहीं स्केची इसलिए है कि उन्होंने अपने इंतकाल से आखिरी साल में, जब अलील थे, आखिरी साल डेढ़ साल में लिखी है। फोलियो बुक्स ने छापी है लाहौर से, और आई रहमान के मेमोर्स हैं, अ लाइफ टाइम ऑफ डिसेंट। और उनकी रहमान साहब का एज ए जर्नलिस्ट भी उनका बहुत बड़ा किरदार है, मतलब वो वन ऑफ द बेस्ट एडिटर्स पाकिस्तान हैड, वन ऑफ द बेस्ट कॉलमनिस्ट्स दैट वी हैड। फिर उन्होंने किताबें जिना एज अ पार्लियामेंटेरियन, उन्होंने अपने कुछ एक दो लोगों के साथ मिलकर को ऑथर की किताब, जिसमें कायद आज़म की तकरीरें वगैरह इकट्ठी की, हालांकि काफ़ी क्रिटिकल भी रहते थे वो कायद आज़म के पोलिटिकल रोल पर, लेकिन एक रिस्पेक्ट थी उस ज़माने में, उन्होंने सब कुछ देखा था। फिर वो पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी के पहले सदर नशीन थे, और ये आपको याद रखना चाहिए कि उनके ख़ानदान का बेशतर हिस्सा 47 के फसादात में शहीद कर दिया गया था, कम लोग बचे थे जो पाकिस्तान आए, कुछ ख़ानदान का हिस्सा ज़ाहिर है बच गया था, लेकिन उनमें किसी किस्म की कोई मुनाफरत नहीं थी, क्योंकि रहमान साहब एक गांव था हरियाणा का जो बिल्कुल बॉर्डर पे था जमुना के, उसके रहने वाले थे, बलोच थे हिस्टोरिकली, यानी इनका रिंद बलोच थे, लेकिन कई सौ साल पहले वहाँ चले गए थे, और अलीगढ़ में उन्होंने इब्तदा में तालीम हासिल, मतलब अपने गाँव से और शहर दिल्ली से वगैरह शहर से निकल के अलीगढ़ में पढ़ा, और अलीगढ़ के बाद फिर वो लाहौर से उन्होंने पढ़ा पंजाब यूनिवर्सिटी से, कुछ अरसे मुल्तान में भी मुकीम रहे, कुछ ख़ानदान उनका कराची में आबाद है। तो एक यानी एक आप ये समझें कि एक जो बैकबोन थी पाकिस्तान में, इंटेलेक्चुअल बैकबोन रेजिस्टेंस की या रिफॉर्म की मैं कहूँगा, महज रेजिस्टेंस नहीं, एक्चुअली रेजिस्टेंस से सिर्फ मसला नहीं होता, मसला हल नहीं होता, रेजिस्टेंस के साथ आपको अल्टरनेटिव भी देना चाहिए, मुतबादिल होगा क्या, मतलब मैं कहता रहूं कि तो बड़ा बुरा निज़ाम है, फला चीज़ ठीक नहीं हो रही, ये कहना इम्पॉर्टेंट है, ये एक्सेप्ट करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसका अगला स्टेप, तो रहमान साहब के पास इतना इंटेलेक्चुअल वे विदॉल था कि वो आपको वो अल्टरनेटिव देते थे, और बहुत बड़ा नुकसान है
सर. लोगों के सवाल हैं, रन थ्रू दिस रैपिड फायर कर लेते हैं. व्हाई डजंट एचआरसीपी हैव अ स्टाफ वर्कर्स यूनियन?
एचआरसीपी कैन एनी टाइम हैव अ स्टाफ वर्कर्स यूनियन. और ये हमारे टोटल स्टाफ की तादाद है 75, जो कि हम हैं. हमारे एक स्टाफ वेलफेयर कमेटी तो हमने इत्तफाक से पिछले ही साल फॉर्म की है, लेकिन हम स्टाफ वर्कर्स यूनियन बनाने में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है. काउंसिल ने हमारी ये बिल्कुल कहा है कि जब भी स्टाफ चाहे अपनी वर्कर्स यूनियन बना ले, लेकिन हमारे यहाँ ये अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो हम एक बहुत शू स्ट्रिंग बजट पर काम करते हैं. और एचआरसीपी बुनियादी तौर पर एज अ मेम्बरशिप ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो काउंसिल के ताबे है, और काउंसिल इलेक्टेड काउंसिल होती है जिसको गुड स्टैंडिंग में जो इसके मेंबर्स हैं वो वोट देते हैं सारे पाकिस्तान से. तो ये एक इन टर्म्स ऑफ स्टाफ बहुत छोटा इदारा है, लेकिन 10 लोगों से ज़्यादा कहीं भी हो तो वो अपनी यूनियन बना सकते हैं. बिल्कुल हमारा स्टाफ बना सकता है.
व्हाट इज़ एचआरसीपी डूइंग टू एलिमिनेट फोर्स कन्वर्जन्स एंड अंडर एज मैरिजेस एंड मैरिजेस विदाउट कंसेंट एंड मैरिटल रेप? बहुत सारी चीज़ें फायदा बट
हाँ नहीं नहीं तो कर रहे हैं ना. मतलब हमारा काम एक तो वॉच डॉग ऑर्गेनाइजेशन है ना बुनियादी तौर पर. तो जब आप एक वॉच डॉग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो हमारे 3-4 काम हैं. एक तो हम फैक्ट फाइंडिंग मिशंस करते हैं, और जितने भी ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ या ह्यूमन राइट्स के विक्टिम्स होते हैं उन कोशिश करते हैं कि उनको हम उनको रिलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं. तो एक हमारा बड़ा मेजर कंप्लेंट सेल है, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं और मुसलसल हम आवाज़ उठाते हैं. और हम जब ज़रूरत पड़ती है तो हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में भी जाते हैं. और ये जो नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी पाकिस्तान में बननी चाहिए उसके लिए मुस्तकिल, और माइनर ये तो इस पर तो मुसलसल जो है अवेयरनेस रेजिंग के भी और पॉलिसी इंगेजमेंट के काम एचआरसीपी करता रहता है, और साथ साथ सारी इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करता है. एविडेंस कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है. इशू को सेंसेशलाइज करने के बजाय उस पर पहले आप एविडेंस शवाहद इकट्ठे करें, एविडेंस क्रिएट करें, और उसकी बुनियाद पर एजिटेट करें, उसकी बुनियाद पर आप लॉबी करें, उसकी बुनियाद पर जो है अवेयरनेस लोगों की आगाही में इजाफा करें. हम ये सारे काम करते हैं.
हाउ डज इट एक्सप्लेन ऑलमोस्ट ऑल एचआर ऑर्गेनाइजेशंस इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग एचआरसीपी बीइंग फंडेड बाय फॉरेन डोनर्स?
नहीं, हमारे सिर्फ फॉरेन डोनर्स नहीं है. और मैं बता देता हूँ बजट भी बता देता हूँ. हमारा तो सारा कोई मामला नहीं है. एचआरसीपी के अलावा कौन सी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन या कौन सी ऐसी एनजीओज हैं जिनको आपको जिनकी आवाज़ को सुना जाता हो? वो किसी सबब से ही सुना जाता है ना. हमारे महज फॉरेन डोनर्स नहीं हैं. हमें हमारा एक पुराना जो डोनर चला आ रहा है वो रॉयल नॉर्वेजियन एम्बेसी है. वो हमें थोड़े से पैसे देता है. उसके बाद आजकल एक डच एम्बेसी के साथ हमारा थोड़ा सा काम है. हम अमरीकियों से पैसे नहीं लेते. ये हमारी काउंसिल का डिसीजन है, क्योंकि ये इदारा ज़ियाउलक के ज़माने में बना था. तो वो कुछ काउंसिल का एक हमारी उस वक्त की काउंसिल ने डिसाइड किया था, वो डिसीजन तब्दील नहीं हुआ. तो US गवर्नमेंट के साथ हमारी उनके साथ इंटरेक्शन इस तरह से ज़रूर होती है कि जैसे हम और एम्बेसी से या एम्बेसी से लोग आके हमसे मिलें या पूछें, एक वो रिलेशनशिप होती है. लेकिन हम एक तो USG का कोई फंडिंग हमारी नहीं होती. दूसरी हमारी ब्रिटिश हाई कमीशन से भी इतफाक से किसी किस्म के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, मगर कोई फंडिंग एचआरसीपी की नहीं है. लेकिन उनके बारे में फैसला कोई काउंसिल ने नहीं किया हुआ. उनके साथ मिलके विदाउट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन काम हमने किए हैं. दूसरी चीज़ जो मैं अर्ज करूँ, हमारा एक मेम्बरशिप बेस है, और वो मेंबरशिप बेस इस तरह, मैं आपको मिसालें देता हूँ कि हमारे एक लाइफ टाइम मेंबर हैं, वो किसी इदारे में काम करते थे, वो प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो उन्होंने सारे एयर कंडीशनर या और कंप्यूटर्स जो थे वो हमें भिजवा दिए. इसी तरह हमारे जो मेंबर्स हैं वो आप 500 रुपये सालाना हमारी मेंबरशिप फ़ीस है, और वो इसलिए बहुत कम है क्योंकि हमारे मेंबर्स में हारी मजदूर किसान भी शामिल हैं और असातिज़ा भी शामिल, प्राइमरी स्कूल टीचर्स भी शामिल हैं. तो उसकी वो फ़ीस तो कम है, लेकिन लोग डोनेशन हमें देते हैं और डोनेशन वो हमें काइंड में भी देते रहे. हमारे बहुत सारे कंप्यूटर्स प्रिंटर्स ये हमें हमारे मेंबर्स ने दिए हुए हैं. हमारे किसी ने आके पर्दे लगवा दिए, किसी ने आके दीवारों के लिए तस्वीरें लगाने को दे दी. तो हम जो है टोटली फॉरेन फंडेड उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. और दूसरी बात यह कि एचआरसीपी जब कायम हुआ था 87 में रजिस्टर हुआ है, 86 में कायम हुआ है, जब आसमा जहांगीर इसकी सेक्रेटरी जनरल थी, जस्टिस दुराब पटेल इसके पहले चेयरपर्सन थे, इलेक्टेड चेयरपर्सन. तो ये लोग, आपका क्या ख्याल है कि ये फॉरेन फंडिंग पे डिपेंडेंट थे? मतलब तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक तासुर है जिसको ज़ायल होना चाहिए. लेकिन ये बिल्कुल तय है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में, आपका ख्याल है कि ह्यूमन राइट्स के इदारों को उन हकूक को तस्लीम करने और उनको चलाने के लिए फंडिंग करेगी?
किसी ने लगता है पहले भी कह चुके हैं कि आपने कहा था आपको ज़ियाउल हक वाला टाइम हमारे से 30 साल बाद आया है, उस पर फिर उन्होंने पूरी तंकीद की है कि आप अपने आप को देखें। जब वो ये बात करते हैं वो इतने कहते हैं पाकिस्तान आपसे बेहतर है, आई मीन हम अपने आप को देख रहे हैं इसलिए तो बता रहे हैं। आई मीन सेइंग दिस डज नॉट मीन दैट वी स्टैंड फॉर राइट नाउ द क्वाज़ी मिलिट्री रूल दैट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान।
नहीं ये मैं समझा नहीं, ये कह रहे हैं,
कह रहे हैं कि भाई व्हाट इज ही, जब वो इस तरह की बात कर रहे हैं मोदी के बारे में तो व्हाट इज ही थिंक अबाउट पाकिस्तान करंट डेमोक्रेटिक सीन
या पाकिस्तान का। अच्छा अगर वो सुन रहे हैं तो सुन लेंगे, पाकिस्तान पे ही तो तनकीद कर रहे हैं। लेकिन भारत में एक बहुत प्रॉब्लम यही पैदा हो गया है ना कि जो 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 एक डोमिनेंट, जो मैंने आपसे कहा था ना कि इमेजिनेशन और डोमिनेंट नैरेटिव जो होता है ना राइट विंग पॉपुलिस्ट, वो चाहे पाकिस्तान में हो, ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान को आप बुरा भला कहते रहें मगर वही काम अगर इसराइल में हो रहा है या वही काम अगर प्यूटिन कर रहा है या वही काम अगर बोल्सोनारो ब्राज़ील में कर रहा है या ट्रंप अमेरिका में कर रहा था या मोदी इंडिया में कर रहा है तो उसको हम कुछ ना कहें। मतलब वी आर ग्लोबल सिटीजन्स ऑल्सो ना, तो ये तो बचकाना सी बात है। ये पाकिस्तानी भी यही करते हैं बातें वैसे, कि आप इंडिया में नहीं देख रहे क्या हो रहा है। अरे भाई देख रहे हैं इंडिया में, इसका ये मतलब है कि हम यहाँ जो है अपनी अपनी अकलियतों, मजहबी अकलियतों, अपनी माइनॉरिटीज़ को के साथ बदसलूकी शुरू कर दें चूंकि इंडिया में हो रही है, तो ये तो कोई बात नहीं है।
एग्जैक्टली, व्हाट इज ही डूइंग अबाउट मिसिंग पर्संस फॉर ऑल ऑफ इंडियाज इशूज, दे आर स्टिल लॉट मोर डेमोक्रेटिक देन अस। तो डेमोक्रेसी के मामले में तो हम कंपेयर कर भी नहीं रहे, हमारे एक शैम सा इलेक्शन होने वाला है, क्या ही हम किसी मुंह से किसी को बोलें। व्हाट इज ही डूइंग अबाउट मिसिंग पर्सन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन बलोचिस्तान, GVN, चलें बलोचिस्तान स्पेसिफिक।
ये आप ऐसा करें कि उनसे पूछें जो बलोचिस्तान के दोस्त हैं हमारे, कि कौन सी वाहिद तंजीम पाकिस्तान में रह गई है, क्योंकि सियासी जमातें तो आपकी उस वक्त जाती हैं, मतलब हमारी मरियम नवाज चली गई थी क्वेटा में भी मिसिंग पर्सन से मिलने, और इस्लामाबाद के कैंप में भी जब उन्हें ये मालूम नहीं था कि इम्कान है उनका फौरी तौर पे इक्तदार में आने का। यहाँ महारंग बलोच और बलोच यकजहती कमेटी के लोग इतने दिन बैठे रहे, हमारी जो आला क़्यादत है उसमें से कौन गया है? हम तो वहाँ रोज़ मौजूद थे, मतलब मैं ज़ाती तौर पर तो इस्लामाबाद में मुस्तकिल नहीं रहता क्योंकि मुझे लाहौर खासा वक्त गुजारना पड़ता है, मगर हमारे हमारे जो काउंसिल मेंबर्स हैं, जो हमारी वाइस चेयर हैं इस्लामाबाद की, नसरीन अजहर, सादिया बुखारी, फरतुल्ला बाबर हमारे काउंसिल मेंबर हैं। ऑफिस बेरर इसलिए नहीं हो सकते कि वो एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, ये तमाम अफरासियाब खटक। उसके अलावा हमारे अपने जो स्टाफ के बेशुम बहुत से मेंबरान, नासिर जैदी साहब हमारी काउंसिल पे हैं जो PFUJ के पहले, जिन्होंने ज़ियाउल्लाह के ज़माने में बहुत ही यंग जर्नलिस्ट थे जब उन्होंने कोड़े खाए थे, तो नासिर जैदी साहब हमारी काउंसिल, ये सब लोग उस कैंप में मौजूद रहते थे। और दूसरी बात ये कि इन मिसिंग पर्सन्स के लिए क्या कर रहे हैं, इन मिसिंग पर्सन्स की जितनी आवाज़ उठाई जा सकती है वो आवाज़ उठा रहे हैं। मोहम्मद हनीफ ने सबसे पहली जो रिपोर्ट की थी वो HRCP के लिए की थी, गुमशुदा अफराद के लिए, और हम तो समझते हैं कि गुमशुदा अफराद जो हैं या जबरी गुमशुदगियाँ जो हैं बलूचिस्तान में हों या पाकिस्तान के दीगर इलाकों में, बलूचिस्तान में ज़्यादा बड़ा मसला है लेकिन पाकिस्तान के दीगर इलाकों में भी हैं, ये एक नहायत इंसानियत सोज बात है। ये एक पूरे ख़ानदान को, पूरी एक एक जमात को यानी कम्युनिटी को और पूरे एक एक मुआशरे को सज़ा देने की बात है। ये माँ बाप, बहन भाई, जितने केसेस हमारे पास आते हैं उन वो जिस तकलीफ में होते हैं उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते वो लोग जो बाहर से बैठ के इसको देख रहे हैं। लेकिन HRCP ने तो की तो एक मेन वर्क स्ट्रीम है एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस।
कुछ कमेंट्स हैं उनको कलेक्टिवली मैं आपसे पूछ लेता हूँ। शिकायत का इजहार कर रहे हैं कि भाई इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो सब ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को सारे ह्यूमन राइट्स याद आते थे, बट पिछले 20 महीने से जब अनप्रेसिडेंटेड बर्बरियत हम पर हो रही है तो आप सब खामोश हैं।
बिल्कुल गलत कह रहे हैं, इन्होंने हमारी टाइमलाइन ही नहीं देखी है,
इसीलिए
ना इन्होंने कोई प्रेस स्टेटमेंट। इनको जो भी हमारे दोस्त जिन्होंने सवाल किया है वो परसों का HRCP का स्टेटमेंट जो PTI ने रिट्वीट, PTI के दोस्तों ने रिट्वीट किए हैं वही देख लें। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक हमारी जो तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं ना, मैं बल्कि इनके जो मरकजी सेक्रेटरी इतलात हैं उनसे मेरा बहुत रबता रहता है, बड़े भाइयों की तरह है मेरे सियासी ख्यालात जो भी हों, रऊफ हसन साहब, तो मैं उनसे भी ये बात कह रहा था, उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने उनको पूरी एक लिस्ट निकाल के भेजी थी, नंबर ऑफ ट्वीट्स, नंबर ऑफ प्रेस स्टेटमेंट्स, नंबर ऑफ प्रेसर्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, और पूरा एक इलेक्शन प्री इलेक्शन मॉनिटरिंग सेल की 5 रिपोर्ट्स हैं इस वक्त तक, वो भी वेबसाइट पर आप देख लें या अखबारात में देख लें। हमें तो खुदा का शुक्र है कि थोड़ी सी ये हमारे बुजुर्गों की वजह से, रहमान साहब का आपने तस्करा किया, अजीज़ सिद्दीकी साहब थे, आसमा जहांगीर थी, जस्टिस जुराब पटेल थे, फखरुद्दीन जी इब्राहिम थे, इन लोगों की वजह से हमारी थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी है तो ये अखबारात में भी आ जाती हैं चीज़ें। लेकिन कोई एक ऐसा वाकया नहीं है, एंड वी आर नॉट अ मीडिया हाउस कि हम उसी वक्त फ़ौरन 1 घंटे के बाद खबर चला दें। वी हैव टू, हमें एविडेंस उसका इकट्ठा करना होता है, उसको क्योंकि हमसे गलतियाँ भी हो जाती हैं कभी, तो हमें ये बात अच्छी नहीं लगती कि हम एक गलत ट्वीट कर दें या गलत प्रेस स्टेटमेंट दे दें और इसे फिर विड्रॉ करें। तो उसमें ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आज कोई एक वाक्या हुआ है तो उस पर खबर, उस पर HRCP का स्टेटमेंट शाम को आए, अगर आज सुबह हुआ है या अगले दिन सुबह है, ये मुमकिन होता है, क्योंकि हमारी 4 लोगों की तो प्रेस टीम है टोटल जिसमें मैं शामिल हूँ, तो वो और वाकयात का आपको अंदाज़ा है। 250 स्टेटमेंट हैं पिछले एक साल में, 200 पोजिशंस कह लें, उसे स्टेटमेंट एक पोजिशन पेपर कर लें या जो भी, सिर्फ 2023 में। तो ये मैं समझता हूँ कि इनको देखना चाहिए, ने उस पूरी टाइमलाइन को देखना चाहिए। मैं जो तहरीक इंसाफ के दोस्तों की बात कर रहा था ना, इनसे एलाइज इनको बनाने नहीं आते, मैं रऊस साहब से भी यही बात कह रहा था। ये एक बिलिजरेंट मोड में ही थे जब ये हुकूमत में थे, उस वक्त वन पेज था, फिर वो वन पेज नहीं रहा, फट गया। तो वो पेज फटने के बाद अब ये नहीं हो सकता कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान HRCP PTI का मीडिया विंग बन जाए, लेकिन ये मैं इनसे बिल्कुल इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि हम खामोश हैं, और मैं इस बात को बिल्कुल गलत समझता हूँ जो हो रहा है इनके साथ। ये भी गलत कर रहे थे, लेकिन टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। लेकिन इन्होंने इस हद की का ऑपरेशन, इन्होंने भी खैर जेलों वेलों में डाला था सारी लीडरशिप को, किसी का पास से हेरोइन निकाल ली हलफ उठा के, किसी के पास से जो है वो मतलब बहुत बुलंद बांग दावे भी किए। 29 लोग इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स में भी ट्राई हुए इनके ज़माने में, उस वक्त वो गलत था, और आज अगर इनके 102 या 108 या जितने भी ट्राई हो रहे हैं वो गलत है, इनका कोई ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह कि इनसे बल्ले का निशान वापस लिया गया, और वाहिद तंजीम थी ये ह्यूमन राइट्स कमीशन जिसने उसके ऊपर क्रिटिकल स्टेटमेंट दिया है। हम तो डर रहे थे कि वो जब FIA के लोगों की लिस्ट आई है तो उसमें हमारा नाम ना हो, तो वो नहीं था, लेकिन इनका निशान लिया गया, बिल्कुल पॉलिटिकल मूव है। मैं नहीं समझता कि, और चूंकि मामला सब जुडिस नहीं है, अदालत का फैसला आ चुका है, तो उसको क्रिटिसाइज करने का हक होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि जो अभी सलूक है, जो लोगों के खिलाफ पर्चे दर्ज हो रहे हैं, अब मेरा एक दोस्त है, नाम मैं नहीं लेता उसकी सेफ्टी के लिए, वो मेरे साथ बैठा हुआ था, वो बिल्कुल वो PTI का वर्कर है, वर्कर नहीं है, लोकल लीडर है, लेकिन वो पंजाब के एक शहर का, वो मेरे साथ लाहौर में उस दिन बैठा हुआ था, उसके खिलाफ फैसलाबाद में और पिंडी में पर्चा हो गया। तो ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, लेकिन एलाइज बनाएं, ये देखेंगे कौन क्या कह रहा है, बजाय इसके कि हर वक्त एक बेलेजरेंट मूड में रहें। यही मैं अपने इन दोस्तों को मैं मशवरा देता हूं कि ये दीगर सियासी जमातों के साथ भी गुफ्तगू शुरू करें। इट इज़ अ पॉलिटिकल प्रोसेस, इस पॉलिटिकल प्रोसेस में अगर सब जो आपके खिलाफ हैं वो काबिल गर्दन जनी हैं, तो फिर तो आप कहीं जाएंगे नहीं।
अगर आप
नहीं, हम तो खिलाफ नहीं है,
अगर आप बैत नहीं लेते खान साहब पे, तो बस फिर आप अब
तो बैत तो हम ना मियां साहब की करते हैं ना खान साहब की करते हैं, बैत तो नहीं करते।
अनवेवरिंग लॉयल्टी
क्राइटेरिया, देखिए प्रिंसिपल पे
पोजीशन, डोंट एग्री विद प्रिंसिपल। आप देखिए कल पॉडकास्ट पे असतूर आए हुए, असतूर का सरे फहरिस्त नाम है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को क्रिटिसाइज करने में, बट ये कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा कि यार कल को अगर जिस तरह हमारे सर्कस है खान साहब आ गए, असतूर ने क्रिटिसाइज किया, वो उसी तरह जलील होगा, ये कोई नहीं देखेगा कि यार अच्छा उसने उस वक्त प्रिंसिपल,
क्योंकि पाकिस्तान
कल पॉडकास्ट पे
असर नहीं देखें, पाकिस्तान में कल्ट पॉलिटिक्स है ना, प्रिंसिपल्स तो, नहीं।
कल अब इस पॉडकास्ट पे असतूर आए थे, खान साहब के लॉयर सलमान अकरम राजा वो आए थे पिछले महीने, बट जो वो परसेप्शन बना रहे हैं बोलेंगे शहजाद गयास तो बर्बाद, इससे बुरा कोई आदमी नहीं है, तो इन बातों का अभी कोई फायदा नहीं है, और इस वक्त अच्छी भी नहीं लगती, कुछ वाकई जुल्म हो रहा है इनके साथ, सो देयर इज नो पॉइंट इन हैविंग दीस थिंग्स। कुछ शेर पे हम इसको एंड करना चाहेंगे, क्या सुनाना चाहेंगे आप?
मैं आपको शेर सुनाऊं, लेकिन आपने चूंकि ह्यूमन राइट्स से मुतालिक बात की ना, तो वो फरहाद ने भी मुझे ताकीद की थी कि मैं तालीम और मईशत इन दोनों पर ज़रूर, अगर आप इजाज़त दें तो एक दो मिनट गुफ्तगू कर लूँ। देखिए तालीम, ये मईशत का मसला जो पाकिस्तान का है ना, वो मोनोपोलिस्टिक कैपिटलिज्म नहीं हल कर सकती। तो आपको एक एक जाहिर है कि इस वक्त कोई सोशलिस्ट इनकलाब तो नहीं आने वाला, लेकिन आपको एक एक बिल्कुल सोशल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव प्रो पीपल इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उस पर एक जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन एग्रीकल्चर वगैरह वगैरह, और जिसका मसला ये ना हो कि पाकिस्तान की ग्रोथ में कितना इजाफा हुआ है, एग्रीकल्चर आउटपुट कितना बढ़ा है, बल्कि उसका मसला ये हो कि किसान कितना खुशहाल हुआ है, वो लेंस बदलना है। ये मैं, और वो उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक आप अपने रीजन में ट्रेड नहीं खोलते, तो आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन बदलनी है, एक बात। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान में 2,62,00,000 बच्चा इस वक्त स्कूल से बाहर है। पाकिस्तान में जितनी पॉलिसी मेकिंग होती है उसकी बुनियाद तहकीक पे नहीं होती। तो आप चूंकि वो बात कर रहे हैं, एक छोटी सी मैं ये बता दूं आपको कि मैं और फरहाद जो हमारे दोस्त हैं और हम कुछ और बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, हम लोग जुज़ वक्ती काम एक एजुकेशन रिसर्च प्रोग्राम पे भी कर रहे हैं और हमारी ख्वाहिश ये है, उसको कहते हैं डेटा इन रिसर्च इन एजुकेशन, उसका रिसर्च कंसोर्शियम है। उस रिसर्च कंसोर्शियम की ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान में, और उसका काम ये होगा कि पाकिस्तान में जितनी पॉलिसी साजी होती है वो सारी पॉलिसी साजी एविडेंस बेस्ड हो, तहकीक की बुनियाद पर हो। और पाकिस्तान में 2,62,00,000 बच्चे ना स्कूल से बाहर हों, और जो जा रहे हैं वो भी 5वीं जमात तक कुछ लिखने के काबिल, 10वीं जमात तक नहीं होते। तो इन चीज़ों को पाकिस्तान में देखने की ज़रूरत है। तालीम में कम से कम 4% GDP का खर्च होना चाहिए, अभी 1.8% है।
ये काफ़ी मैनिफेस्टोज में लिखा हुआ है, आई थिंक जमात इस्लामी, PMLN, सबके मैनिफेस्टोज में इस तरह की बात है तालीम का बजट बढ़ाने की। होपफुली इट विल हैपन।
उन्होंने लेकिन कमिट कोई परसेंटेज नहीं की हुई।
नहीं नहीं लिखी हुई
नहीं, वो तो उन्होंने परसेंटेज कमिट की हुई है जिनको ताकत में आना नहीं है ना।
सर
हाँ जी, आपको नज्म सुना दूँ कोई?
आप जो चाहें।
अच्छा,
मुझे लग रहा था हम ज़्यादा नज़मों पर आज बात करेंगे, मे बी होपफुली नेक्स्ट टाइम वी कैन हैव यू बैक अगेन।
लंबी। अच्छा मुझे ये बताइए कि एक जो बात हो रही थी कि वक्त कितना है?
आप जितना चाहें, कितनी जो चाहें आप।
नहीं नहीं भाई, मेरी तो लंबी लंबी नज़में भी है ना, मैं मुख्तसर कोई नहीं कहा। मैं आपको एक गज़ल सुना देता हूँ। गज़लें मैं कहता कम हूँ, कम गज़लें कहता हूँ, लेकिन एक गज़ल ही सही आज, क्योंकि वो रिवायत से भी जुड़ी हुई है और हमने ज़रा गैर रिवायती गुफ्तगू की।
चलिए सर, लेट्स गो।
इस नज्म गज़ल, हाँ नज्म नहीं है, गज़ल है। शेर कोई नहीं कहा मनसब व जाह के लिए, शेर कोई नहीं कहा मनसब व जाह के लिए, नज्म कभी नहीं लिखी मीरे सिपाह के लिए। शेर कोई नहीं कहा मनसब व जाह के लिए, नज्म कभी नहीं लिखी मीरे सिपाह के लिए। लुक्मे तर अजीज तर था भी नहीं भी था कि दर, लुक्मे तर अजीज तर था भी नहीं भी था कि दर, खुलकर भी बंद ही रहा संजरो शाह के लिए। और हुस्न के सारे जाविये पेशे नजर रहे मगर, हुस्न के सारे जाविये पेशे नजर रहे मगर, दिल को लहू किया तो बस चश्मे स्याह के लिए। दिल को लहू किया तो बस चश्मे स्याह के लिए। और दर्द रही नाराज है दर्द से साजबाज है, राहत जहां रकीब है तेरे तबाह के लिए। बोसए कुंजे लब ने कब कर दिया मुझको जहां बलब, बोसए कुंजे लब ने कब कर दिया मुझको जहां बलब, आरजुए हयात अब एक गुनाह के लिए। और हारिसे खाम से हजर कुफ्र भी कब है मोतबर, हारिसे खाम से हजर कुफ्र भी कब है मोतबर, तारिके दीनो दिल है एक गैरत माह के लिए। अब मैं आपको आखिर में जिस नज़्म का आपने हवाला दिया था वो सुना देता हूँ।
जी जी, वाह वाह वाह।
सलामत माशकी।
लेट्स गो।
माशकी जो मश्क का पता है आपके, क्योंकि यंग लोग आपको काफ़ी सुनते हैं, द वाटर स्किन जिसमें वो कैरी करते हैं पानी, मश्क कहते हैं उसको। कुछ लोग कलोकियल में मशक भी कहते हैं, लेकिन वो जो उसको वो है, तो ये माशकी कहते हैं जो लोग, ये चमड़े का एक बड़ा सा एक वो होता है, थैला टाइप का, कंटेनर टाइप, उसमें पानी लेके लोग पीने का पानी और पानी पहुँचाया करते थे माशकी, और उनको चंद सिक्के उसके मिल जाते थे, क्योंकि ज़ाहिर है पाइप वाटर तो था नहीं। और पहले अब, और अब मज़े की बात यह कि पाइप वाटर आ गया था, अब फिर ख़त्म हो गया। सलामत माशकी, ये किरदार, किरदारी नज़में हैं मेरी बहुत सारी, उनमें से ये किरदारी नज़में हैं। वो शहर बेनिहायत से मुफस्सिल कमियों की एक बस्ती थी, वो शहर बेनिहायत से मुफस्सिल कमियों की एक बस्ती थी, जहाँ सब चंगड़ों चूड़ों चमारों नाल बंदों खिश्त मजदूरों जनाई दाइयों और कंजरों ने घर बनाए थे। मसीही बाल्मीकि और मुस्लिम साथ रहते थे। सलामत माशकी बस्ती में पानी बेचता था, चंगड़ों और कंजरों के छोकरों से तंग रहता था जो पैसे मार लेते थे। मुसाफिर हो कोई तो एक बोतल मुफ्त थी, मां ने कहा था। चौधरी मंजूर के आबाई खेतों में लगे बरमे से पानी लेकर आता था जो बस्ती से जरा ही फासले पर था। अगर बरमे की बोकी टूट जाती, बल्दिया के जंग खुर्दा पंप तक धूपों में जाना किस कदर खलता, मगर पानी में रोजी थी। मगर पानी में रोजी थी सो पेंडा काटना पड़ता। पुराने कत्थई पक्के हुए चमड़े की मोटी मश्क थी, लेकिन सिलाई जा बजा उधड़ी हुई थी जिससे पानी रिसता रहता था। सुभान अल्लाह मिरासी का बड़ा लड़का, सुभान अल्लाह मिरासी का बड़ा लड़का जब उसकी नौ ब्याहता लाडली बीवी को ले भागा तो वो शब्बर बहुत रोया, मगर फिर ये ख्याल आया, चलो अच्छा हुआ एक जी घटा और जिम्मेदारी कम हुई मेरी। सलामत माशकी गरचे मसीही था मगर एक माशकी था। करबला वालों से उसको ऐसी नस्बत थी, मुहर्रम में कभी जब दोस्तों में बैठता कहता जो मैं होता तो भर भर मश्क पानी लेकर आता, अगर बरमे की बोकी टूट जाती पंप तक जाता। हवा बर्बादियों की चल पड़ी थी, शहर की वहशत मुफस्सिल बस्तियों तक आ गई थी, बाल्मीकि और मसीही घर जलाए जा रहे थे। ढाई मरले का सलामत माशकी का तंग कोठा, मश्क बिस्तर चारपाई, टीन का संदूक बर्तन, कच्ची लकड़ी की सलीब और दाल चावल, घी शकर मिर्चें नमक चाय की पत्ती, कुल असासा जल रहा था। पानी लेने चंगड़ों और कंजरों के छोकरे दौड़े मगर नाकाम वापस आए। सब कुछ जल चुका था, चौधरी मंजूर के आबाई खेतों में लगे बरमे की बोकी घिस चुकी थी, बल्दिया के पंप में पानी नहीं था।
वाह, थैंक यू सर,
बहुत शुक्रिया
एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।